ॐ अज्ञानतिम्रन्धस्याज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति सिद्धांत के भक्ति के सिद्धांतों पर विचार करते हुए बीच में हमें वर्जनीय अपराध के बारे में भी बता रहे हैं, मुख्यतः सेवा अपराध और नाम अपराध के बारे में चर्चा की गई है। तो ये अध्याय का नाम ही है वर्जनीय अपराध, और यहाँ पे नेक्टर डिवोशन में ये चैप्टर 8 है, अध्याय 8। अध्याय का शीर्षक है वर्जनीय अपराध। तो सेवा अपराध के बारे में यहां वर्णन करेंगे। कुछ शास्त्रों में 32 प्रकार के सेवा अपराध दिए हैं और कुछ शास्त्रों में 50 प्रकार के सेवा अपराधों का वर्णन प्राप्त होता है। और सेवा अपराधों का विभाग किया गया है, श्रील भक्तिनाथ ठाकुर ने भी अपने पुस्तक हरिनाम चिंतामणि में इसका विवरण दिया है, जो इस प्रकार से है। पहला बता रहे हैं, श्रीमूर्ति सेवक निष्ठ अर्थात जो मूर्ति की सेवा करते हैं उनके संबंध में अपराध। दूसरा, श्रीमूर्ति स्थापक निष्ठ अर्थात जो मूर्ति की स्थापना करते हैं उनके संबंध में कुछ अपराध। तीसरा, श्री मूर्ति दर्शक निष्ठ अर्थात जो श्री मूर्ति के दर्शन करने जाते हैं उनके प्रति अपराध। सर्वनिष्ठ अपराध अर्थात इन सब के लिए कोई अपराध जो सबके लिए लागू होता है। तो इस सेवा अपराधों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे और जाने का प्रयास करेंगे सेवा अपराध होते क्या है, कौन कौन से सेवा अपराध है। अक्सर ये कहा जाता है और शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है कि नाम संकीर्तन के द्वारा हम सेवा अपराध से बच सकते हैं। सेवा अपराध अगर हम कर बैठते हैं और अगर हम नाम संकीर्तन में भाग लेते हैं या हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करते हैं तो हमें सेवा अपराध से छुटकारा मिलता है। लेकिन कोई अगर नाम के बल पर अपराध करता है तो फिर वो नाम अपराध हो जाता है। जैसे कि सातवां नाम अपराध है नाम के बल पर पाप करना, तो ये क्या हो गया, नाम के बल पर अपराध करना। नाम के बल पर अपराध करना, अपराध का मतलब ये है कोई भी कार्य है जिससे गुरु वैष्णव कृष्ण भगवान प्रसन्न ना हो, हमारे कार्यों से डिससेटिस्फाई करना उनको, उसी को अपराध कहा गया है। और अगर आप पाप कर रहे हैं तब भी आप हरिनाम ले सकते हैं और पापों से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन अपराध जब हम करना शुरू करते हैं तो अपराध का जो निवारण है उसमें काफी समय लगता है। अपराधों से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं। भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर ने बताया है कि ऑफेंस इज मिलियन टाइम्स एक्चुअली सीरियस देन सिंस। अपराध जो है लाखों गुना ज्यादा खतरनाक है इससे पाप से। पाप से छुटकारा आपको मिल जाता है, नामाभास की स्थिति में पहुंचते हैं तो प्रारब्ध से भी छुटकारा मिल जाता है, लेकिन अपराध से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। जैसे श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने यहां तक बताया है माधुरी कादंबरी में, अपराध उत्थ अनर्थ। ये जो अपराध उत्थ अनर्थ है ये भाव की स्थिति तक भी पहुंचता है, वहां जाकर उसकी आत्यांतिकी होती है। आत्यांतिकी का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से समाप्त होना, आत्यांतिकी कहते हैं 100% जो आपको उसमें निवारण मिलता है वो भाव की अवस्था तक पहुंचता है, भाव की अवस्था में जाकर वो समाप्त होता। भाव की अवस्था में भी अनर्थों के अवशेष रह जाते हैं, यानी कि उसका आभास रहता है अनर्थों का। कोई जो भाव की अवस्था में कैसे रहता है अनर्थों का, अनर्थ कैसे रह जाते हैं, वैसे है जैसे किसी कमरे में अगर आपने गुलाब का फूल रखा है और या किसी ग्लास में कर्पूर रखा है, उस कर्पूर को आप निकाल देते हैं या कमरे से फूल निकाल देते हैं, फिर भी उसकी गंध रह जाती है, उसके निकालने पर भी उसका आभास होता है। तो इस तरह से भाव की अवस्था में भी रह जाते हैं। ये अपराध उत्थ अनर्थ जो है ये सबसे ज्यादा गंभीर माना गया है। अगर आप नामाभास से शुद्ध नाम जाते हैं तो बहुत जल्दी आप भगवत प्रेम प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अजामिल ने पाप बहुत सारे किए, लेकिन जब नाम का आभास हुआ तो उसके बाद फिर कोई अपराध नहीं किया उन्होंने, कोई नाम अपराध नहीं किया उन्होंने, कोई वैश्व अपराध नहीं किया उन्होंने। इसे हरिद्वार जाकर 12 साल के भीतर ही उन्होंने शुद्ध नाम की स्थिति प्राप्त कर ली। 12 साल के बाद उनको भगवत प्रेम प्राप्त हुआ और वैकुंठ धाम में प्रवेश किए अजामिल। हालांकि उनका नामाभास क्या था, संकेत नामाभास, वो तो अपने पुत्र को पुकार रहे थे, लेकिन नाम भगवान का था, नारायण पुकारा उन्होंने, इसलिए विश्वदूत भी आ गए थे। और उसके बाद उनको 12 साल और जीवन प्राप्त हुआ जो उन्होंने हरिद्वार जाके बिताया, और हरिद्वार में वो शुद्ध नाम की अवस्था पर पहुंच गए। लेकिन अधिकांश क्या होता है, सामान्यतः हम लोग नामाभास अगर होता भी है तो हम फिर से नाम अपराध करने लगते हैं, इसलिए वापस हम उसी स्थिति में आ जाते हैं और फिर अपराधों से छुटकारा पाने में कई साल बीत जाते हैं या कई बार कई जन्म भी बीत जाते हैं। तो ये जो सेवा अपराध है, हालांकि हम इस बात पे इतना ध्यान देते नहीं हैं, लेकिन सेवा अपराध भी जो है बहुत गंभीरता से हम इसको लेना चाहिए, और अगर इसको गंभीरता से नहीं लेंगे तो फिर ये नाम अपराध में बदल जाता है, नाम के बल पर अपराध करना। ठीक है, उपदेशावर्त में श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं, अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघर्ष लोलेम षड्भिर् भक्ति विनश्यति। तो नियमाग्रह का अर्थ क्या है, नियमाग्रह का अर्थ ये भी होता है नियमों का पालन करना उसका उद्देश्य जाने बगैर। इसमें कई ऐसे नियम हैं जिनका पालन ना करने से अपराध लगता है, और कई ऐसे नियम हैं जिसका अगर आप पालन करते हैं और पालन करते ही पालन करने से, लेकिन आपको कृष्ण का चिंता नहीं होता है, कृष्ण के बारे में आप स्मरण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा नियम का पालन करना भी व्यर्थ है, क्योंकि वो नियम आग्रह हो जाता है। एक होता आग्रह और एक होता आग्रह। आग्रह का मतलब त्याग देना, रिजेक्ट करना, और आग्रह का मतलब होता है क्या, आग्रह का मतलब होता है रिजेक्ट करना, और आग्रह का मतलब क्या होता है, क्या नियमों से बहुत ज्यादा आसक्त रहना उद्देश्य जाने बगैर। तो इसमें कई ऐसे नियम आएंगे जिसे आप खुद ही आपको समझना है कि ऐसी अवस्था में इन नियमों का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पिछली बार हमने ये चर्चा किया था, 64 भक्ति के अंगों का हमने वर्णन किया, उसका उद्देश्य एकमात्र क्या है कि हम भगवान का चिंतन कर पाए, हमें भगवान का स्मरण हो। अगर अंत काल में भगवान का स्मरण ही नहीं हो रहा है तो फिर इतने सारे अंगों का पालन करने का क्या लाभ। स्मरण होना बहुत जरूरी है, चिंतन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से हम लोग समझेंगे और ये करके हम पढ़ते जाते हैं जो यहां पर श्रील रूप गोस्वामी ने दिया है। पूरे वैदिक साहित्य में भगवान की सेवा से संबंधित निम्नलिखित 32 अपराधों की सूची मिलती है। खासकर जहां पे प्राण प्रतिष्ठित विग्रह, प्राण प्रतिष्ठा जहां पर की गई है गुरुदेव के द्वारा, विग्रह स्थापित किया गया है वहां पर ये सारे नियम लागू होते हैं। जितना भी हमने विभाग किया था इससे पहले, सबसे पहले हमने बताया था सेवा अपराध के विभाग, वो सब लागू होते हैं। तो इन बातों पे हम ध्यान देंगे। पहला यहां बताया है, मोटर कार या पालकी में सवार होकर या जूता पहनकर अच्छे विग्रह के मंदिर में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। गाड़ी में अगर आप आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि गाड़ी में आते हैं और सामने विग्रह का दर्शन भी हो रहा है और बिल्कुल सामने विग्रह के सामने आप उतरते हैं। जैसे कई जगह पर ऐसा होता है, जैसे पहले पंजाबी बाग में जो मंदिर था तो वहां पर उतरते ही आपको सामने राधिका रमण का दर्शन होता। पंचशील में भी होता है, ऐसे कई मंदिरों में होता है। तो ऐसे में गाड़ी या तो आगे रोके या पीछे, मंदिर के सामने नहीं, है ना। पालकी में प्राचीन समय में, पुराने जमाने में लोग पालकी में आते थे, पालकी में आते थे लोग, राजा लोग आते थे, नवाब लोग आते थे, मंत्री लोग आते थे, पालकी में बैठते थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भी पालकी में बैठ के जाते थे, जब वो नवाब हुसैन शाह के साथ थे। तो पालकी में बैठकर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। कहने का भाव क्या है कि ठाकुर जी के सामने, विग्रह के सामने, भगवान के सामने एक दास के रूप में जाना है, एक सेवक के रूप में जाना है, वहां मालिक के रूप में नहीं जाना है। गाड़ी से उतरने का मतलब है, पालकी से उतरने का मतलब है कि आप ये बात भाव प्रकट कर रहे हैं कि आप सेवक नहीं है, आप मालिक हैं, तो इसलिए सेवा अपराध लग जाता। ठीक है। दूसरा, भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाने से चूकना नहीं चाहिए। जन्माष्टमी उत्सव है या रामनवमी है, रथ यात्रा है, समय उत्साहित होकर भाग लेना चाहिए, इससे भागना नहीं चाहिए, है ना। रूप गोस्वामी बोल रहे हैं हमें भाग लेना चाहिए, बोलते रथ यात्रा में से जाने से क्या होगा, है ना। तो जगन्नाथ जी क्यों आ रहे हैं फिर सड़क पे, वो भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो तो जगन्नाथ जी को आप क्यों परेशान कर रहे हो, है ना। जगन्नाथ बोले सुभद्रा जी को मंदिर से निकालकर आपने रथ पे बिठाया इसलिए कि जगन्नाथ जी सबको दर्शन दे, और हम कहते हैं कि हमें जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम, हमारा समय ज्यादा महत्वपूर्ण है जगन्नाथ जी से, है ना। हम इतने ऊंचे भक्त हो गए हैं कि हमें जगन्नाथ जी के दर्शन करना जरूरी नहीं लगता है। हम बोलते हैं कि हम अपनी क्लासेस करेंगे, हमारी ट्रेन चल रही है, अब समझ रहे हैं। तो जगन्नाथ जी अगर निकल के आ रहे हैं मंदिर छोड़कर दर्शन देने के लिए, तो जगन्नाथ जी किसको देखने के लिए आ रहे हैं सबसे पहले, वो भक्तों को देखने के लिए आ रहे हैं। बिना भक्तों के कोई यात्रा न शुरू हो सकती है न संपन्न हो सकती है। जगन्नाथ जी रथ का रथ जब भी आगे चलता था तो जगन्नाथ जी का रथ आगे चलता था पूरी में, कब, जब महापुरुष सामने होते थे। जब महापुरुष सामने नहीं होते थे तो रथ रुक जाता था, है कि नहीं। अभी देखिए जगन्नाथ में, पुरी में, अभी पुरी में जगन्नाथ जी का रथ रुक गया फिर से, इस बार फिर ये घटना हुई, है ना। उस दिन पूरा दिन रुका रहा शायद, है ना, कोई कह रहा था भक्तिनो ठाकुर के घर के पास जैसे पहले रुका था। चैतन्य मठ है ना जो भक्तिनो ठाकुर का घर है, तो घर के सामने रुक गया फिर से रथ, जगन्नाथ जी का रथ रुक गया, ब्रेक मार दिया जगन्नाथ जी ने। तो जगन्नाथ जी लीला करते हैं, जगन्नाथ जी रुक जाते हैं देखकर, भक्तों का उत्साह देखकर, भक्तों का आनंद देखकर, उनकी सेवा की भावना देखकर। लेकिन कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि जगन्नाथ जी का रथ चलने से ही इनकार कर दे, जगन्नाथ जी चलने से इनकार कर दे। तो ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि सामने कोई भक्ति नहीं है। जब भगवान कोई भी लीला करते हैं तो उसमें भक्तों का होना आवश्यक है। कोई भी लीला संपन्न नहीं होती जब तक भक्त नहीं होंगे, ठीक है ना। गोलोक धाम हो या यहाँ ब्रज की लीलाएं हो या कोई भी लीला हो, उसमें कृष्ण जो है अकेले कभी नहीं होते हैं। एक बार प्रभुपाद को किसी ने पेंटिंग बनाकर दिखाया, उसमें कृष्ण अकेले खड़े हैं। प्रभुपाद ने कहा ये तो प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि कृष्ण कभी अकेले नहीं होते, उस तो आपको साथ में दिखाना पड़ेगा, गाय दिखानी पड़ेगी, मोर दिखाना पड़ेगा, कोई तो भक्त को आपको खड़ा करना पड़ेगा सामने, है ना, तभी वो चित्र प्रमाणिक है। भगवान की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी तथा रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाने से चूकना नहीं चाहिए, इसलिए जन्माष्टमी उत्सव बड़ा उत्साहित होकर मनाना चाहिए, है ना, पैसा नहीं बचाना है उसमें। आप ठीक है बहुत पैसा खर्चा कर लिया, अब ये नहीं करेंगे हम, वो नहीं करेंगे, है ना, इस साल हम लोग लाइट नहीं जलाएंगे, पीछे डीडी वालों ने जला तो है हेलोजन का लाइट, क्यों बिजली बेकार करें, है ना। और अपना जब जन्मदिन होता है तो उसमें लाखों रुपया खर्च करते हैं लोग, पार्टीज देते हैं, क्लब्स में जाते हैं, फाइव स्टार में जाते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं लोग, बेकार पैसा खर्च करते हैं। लेकिन जब भगवान का जन्मदिन आता है तो उस समय लोग सोचते हैं कि क्या जरूरत है इतना पैसा बेकार करने की, कि धर्म के नाम पर इतना पैसा बेकार किया जा रहा है, जबकि गरीब लोग वहां पर भूखे हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा है, आप पंडाल में और लाइट्स में इतना पैसा गवा रहे हो, है ना। तो लक्ष्मी तो भगवान की सेवा में लगेगी, लक्ष्मी तो भगवान की सेवा में लगेगी ना, है कि नहीं। तो जिनकी सेवा लगना चाहिए लक्ष्मी को, उनको लगाना पड़ेगा। तो इस तरह उत्साहित होकर जन्माष्टमी जैसे उत्सवों में, रथ यात्रा में, यहां लिखा है रूप गोस्वामी ने, भाग लेना चाहिए, नहीं तो ये अपराध लगता है। और जैसे रथ यात्रा हो रही है, रथ यात्रा के बीचों बीच भाग जाना या शॉपिंग के लिए चले जाना, आपको कीर्तन की सेवा दी गई है या बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा दी गई है या प्रसाद की सेवा दी गई है, बीच में छोड़ के भाग गए, हाँ ठीक है, कोई आपातकालीन स्थिति है, कोई मर रहा है या कुछ हो गया घर पे, या कुछ किसी ने कुछ बुला लिया, कोई महत्वपूर्ण कार्य है इमरजेंसी में, तो वो अलग बात है। लेकिन आप वैसे ही जा रहे हैं कि बस यहाँ बस और समय क्या खराब करें, दर्शन ही तो करना था, दर्शन कर लिया मैंने, थोड़ा रथ खींच लिया मैंने, मैंने रथ पर अपना हाथ दे दिया, है ना, और मैंने दंडवत कर लिया, थोड़ा जगन्नाथ जी का प्रसाद ले लिया, अब मैं घर जा रहा हूं, मैं धन्य हो गया। तो ये भाव बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए महाराज भी हमेशा अपने आचरण के द्वारा सिखलाते हैं, जगन्नाथ जी के रथ के साथ आखिर तक चलते हैं, आप देखा होगा महाराज कभी बीच में नहीं जाते हैं, वो भी कई कार्य हैं उनके पास भी, वो भी जा सकते हैं, बस मैं भी बिजी हूँ, सब बिजी है, तो जगन्नाथ जी एक फ्री है सिर्फ, हम ही बिजी हैं, और जो जगत के नाथ हैं, जो रथ पे बैठे हैं, वो ही है एक सिर्फ फ्री, है ना, उनको फ्री छोड़ दो, रस्सी भी छोड़ दो, सब अपने अपने घर चले जाएंगे। तो रथ को खींचना चाहिए आखिर तक, नहीं तो अपराध लगता है इससे रास्ते में छोड़ के जाना। कीर्तन करने वाले, बजाने वाले, मृदंग बजाने वाले और प्रचार करने वाले, सबको सेवा करनी चाहिए अंत तक, जहां तक यात्रा चल रही है वहां तक सेवा भगवान की होनी चाहिए किसी भी रूप में। और आगे बता रहे हैं, अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। और जब भी भगवान का दर्शन करने जाते हैं मंदिर में, तो वहां दंडवत करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। भोजन के बाद हाथ तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रसाद ले लेते हैं, अगर आप पांव नहीं धोएंगे तो प्रसाद हॉल में जो झूठा है वो आपके पांव में लगता है, आपका पांव झूठा हो जाता है, और उसी पांव को लेकर आप मंदिर में जाएंगे तो पूरा मंदिर आप गंदा कर देते हैं। छूटे पांव लेकर कभी भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, बाहर से भी जब आते हैं मंदिर में जाने से पहले, इसलिए पांव धोना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। भोजन के बाद आप, ये हो गया, दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश ना करें, वैदिक शास्त्रों के अनुसार यदि किसी परिवार में कोई मर जाता है तो सारा परिवार कुछ समय के लिए अपने पद के अनुसार दूषित होता है। ब्राह्मण परिवार में दूषण का काल 12 दिन है, क्षत्रियों तथा वैश्यों के परिवार में 15 दिन और शूद्रों में 30 दिन होता है। हाँ ये ठीक है, लेकिन वैष्णव लोग जो हैं अधिकांश क्या करते हैं, वैष्णव लोग जब किसी को शरीर छोड़ते हैं, उनके शरीर छोड़ने पर वैष्णव लोग भी अपना संस्कार करते हैं, संस्कार किया जाता है, लेकिन संस्कार करने का तरीका अलग है। उसमें वैष्णव ब्राह्मण वैष्णव को प्रसाद खिलाया जाता है, संकीर्तन किया जाता है, उसी से ही शुद्धिकरण हो जाता है, इतना लंबा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये अंतर है। एक हाथ से नमस्कार नहीं करना चाहिए, है ना, ग्रंथ लेके नमस्कार नहीं करना चाहिए, महाप्रसाद लेके नमस्कार नहीं करना चाहिए, ये सब अपराध है। बोलते नहीं प्रभु जी ना करने से तो अच्छा है, नहीं करने से बुरा होगा, ना करना अच्छा होगा, हाथ जोड़ लें अच्छा है। आपके हाथ में ग्रंथ है, आप किसी के पांव के नीचे कैसे रख सकते हो ग्रंथ? आप अपना ग्रंथ हाथ में, आपके ग्रंथ है, आप किसी के पांव के नीचे वो ग्रंथ दे रहे हैं, है ना, वो अपराध नहीं है? आपके हाथ में माला है, आप किसी के पांव के नीचे अपनी माला दे रहे हैं जिसमें आप जप करते हैं, हरि नाम लेते हैं, महाप्रसाद आपके हाथ में है, किसी के पांव के नीचे आप अपना आप महाप्रसाद रख रहे हैं, पांव के नीचे, किसी के पांव के नीचे, ये ठीक है? ये सब अपराध है, एक हाथ से दंडवत करना, तो ये सेवा अपराध माना जाता है। तो दंडवत करना आना चाहिए। पहले हम लोग दंडवत के बारे में काफी चर्चा कर चुके हैं, दोबारा नहीं दोहराएंगे। पांचांग दंडवत, अष्टांग दंडवत, ये सारा हमने बताया आपको। तो वैसे हम लोगों को दंडवत करना चाहिए, दंडवत करना सीखना है। वो अलग बात है, वो दंडवत नहीं है, वो तो आप सिर्फ हाथ से नमस्कार कर रहे हैं, हम दंडवत की बात कर रहे हैं ना। एक हाथ से क्या हरे कृष्णा कर रहे हैं? हरे कृष्णा तो मुंह से बोल रहा है ना। तो आगे श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, विग्रह के सामने परिक्रमा करना। कई लोग ऐसे विग्रह के सामने ऐसे घूमते हैं, कई बार कई भाववेश में आते हैं, कई ऐसे लोग भी आते हैं हमारे मंदिर में, बहुत आते हैं ऐसे, कुछ अल्पकाल के लिए आते हैं, उसके बाद नजर ही नहीं आते हो, वो विग्रह के सामने ऐसे ऐसे घूमते हैं, जोर से अचानक गिर जाते हैं, फिर तो उसके बाद नजर ही नहीं आते कभी। नहीं कई बार हुआ है, ऐसे हुआ है ना दिल्ली मंदिर में, बहुत बार हुआ है, अचानक कोई आएगा भागा भागा और विग्रह के सामने ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा और अचानक गिर जाएगा और उसके बाद नजर नहीं आता कभी, चक्कर आके गिर गया, पता नहीं क्या है। तो परिक्रमा करने का मतलब, परिक्रमा करने का विधान यह है कि मंदिर की परिक्रमा करने का नियम यह है कि अर्चे विग्रह के दाहिने हाथ से परिक्रमा प्रारंभ करके मंदिर के बाहर बाहर प्रतिदिन कम से कम 3 परिक्रमाएं की जाए, तो 3 बार परिक्रमा करते हैं, अर्चे विग्रह की परिक्रमा 3 बार की जाती है, पुरुषोत्तम मास में 4 बार की जाती है। अर्चे के समक्ष अपने पांव नहीं फैलाना चाहिए, ये सब एक्चुअली एक बताने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद ही समझ आना चाहिए ऐसा क्यों बोला गया है। किसी को अपना पांव दिखाना जो है वो अच्छा नहीं है ना? हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं जब अपने को देखते हैं, तो पांव देखते हैं, क्या देखते हैं? चेहरा देखते हैं ना, कोई अपना पांव थोड़ा देखता है सबसे पहले, पांव सबसे नीचे होता है इसलिए, और देखने के लिए नहीं होता बार बार, और ना दिखाने के लिए होता है, और विग्रह को दिखाना ये अपराध लगता है इसमें, गुरु को या वैष्णव को या विग्रह को पांव दिखा के बैठना ये अच्छा नहीं। अब ऐसा कौन सा, ऐसी कौन सी परिस्थिति हो सकती है जिसमें आपको पांव दिखा के बैठना पड़ जाए, ऐसी कोई स्थिति है? हाँ, अगर आप बीमार हैं, घुटनों में दर्द है, पाँव में दर्द है, या तो आप लंगड़े हैं, एक पाँव ही है, दूसरा पाँव तो आप प्लास्टर है या कोई फ्रैक्चर हो गया है, व्हील चेयर में है आप है, ठीक है ना, पाँव नहीं है तो फिर दिखाने का मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पाँव में चोट लगी है, आप मोड़ नहीं सकते हैं, घुटनों में दर्द है, तो वो समझ सकते हैं, क्योंकि वहां उद्देश्य है कि दर्शन करना भगवान का, या आप भागवत का श्रवण करने जा रहे हैं, कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, वहां पर वो जरूरी है, तो वहां पर जाना जरूरी है। अगर नहीं जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, नियमाग्रह हो जाएगा, है ना, वहां पर अपराध नहीं लगता है, बल्कि ना जाना जो है वो अपराध हो जाएगा, जाना जरूरी है। और उल्टा उससे भगवान और खुश होते हैं देखकर कि देखो इतना कष्ट होते हुए भी ये दर्शन करने आया है, ये कथा सुनने आया है। ये अर्चन वगैरह के समक्ष प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, कुछ खाना नहीं चाहिए प्रसाद वगैरह के सामने दर्शन करते हुए। उस समय लागू नहीं होता नियम, क्योंकि जगन्नाथ जी जब बाहर आते हैं, ये ऑल्टर के अंदर जब डिटीज होते हैं उसके, तब ये सारे नियम है। एक बार डिटीज जब ऑल्टर से बाहर आ जाते हैं तो वो कई नियम वहां बदल जाते हैं, ठीक है ना। तो जगन्नाथ जी को तो आप टच भी करते हैं लोग रथ पे चढ़कर, कई लोग उनको एम्ब्रेस भी करते हैं, जगन्नाथ जी को छूते भी हैं, हाँ, तो वो जब ऑल्टर में होते हैं तो सारे नियम लागू होते हैं वहां पर, पांच रात्रि की विधि के द्वारा जो स्थापित हैं। लेकिन वगैरह जब ऑल्टर से बाहर जाते हैं तो वहां पर वो नियम लागू नहीं होते हैं। हाँ जी, वो तो लेते ही ना आप, चरणामृत तो था, तुलसी दल तो होता ही है। ऑल्टर के सामने तो लेते हैं रोज, ठीक है ना, ये तो कोई प्रश्न नहीं है। भगवान की श्रेष्ठता बतलाने वाले शास्त्र के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, ये शास्त्र सब बकवास है, ये सब ऐसे ही है, भावुक वाली बातें हैं, इसका क्या सबूत है, हमने जो पढ़ा उसका सबूत है सब कुछ, लेकिन जो यहाँ शास्त्रों में दिया उसका कोई सबूत नहीं है। क्या सबूत है, हमने पूछा किसी से, 2+2=4, व्हाट इज द प्रूफ, हमने प्रश्न IIT में किया था वहां से स्टूडेंट से, वो सोचने लगे सब कुछ देर तक, व्हाट इज द प्रूफ, 2+2=4, बोलते हैं प्रूफ, व्हाट इज द प्रूफ, दिस इज ए, According to me it is B. According to you it is A. According to me it is B. So what is the proof? Proof है कुछ? क्या proof है? सोचिए इसके बारे में। शास्त्र में जो लिखा है उसी के लिए proof चाहिए सिर्फ। संसार में जो भी दिख रहा है वो सब सच है, शास्त्र में लिखा वही झूठ है सिर्फ। किसी विरोधी शास्त्र का सूत्रपात नहीं करना चाहिए, विरोधी शास्त्र का सूत्रपात नहीं करना चाहिए। कोई स्क्रिप्चर जिसमें भगवान की अवहेलना की गई है, ऐसा कोई शास्त्र जहां पर अन्य देवताओं के बारे में बताया गया है, जैसे भगवान की महिमा को आप कम दिखा रहे हैं, कोई ऐसा शास्त्र कोट करके, तो भी अपराध लगता है, ठीक है। और आगे सुनिए, अर्चय विग्रह के समक्ष पान नहीं खाना चाहिए, ये तो क्या रहा, पान नहीं खाना चाहिए, आगे चलेंगे आप, ठीक है, आगे चलाएंगे। खैर पान तो हम खाते ही नहीं है, अगर कोई खाता हो तो नहीं खाना चाहिए, थोड़ा आगे निकल गया। अच्छे वगैरह के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, यह 12 नंबर। 13 नंबर है, अच्छे वगैरह के समक्ष ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम बाहर जाके झूठ बोल सकते हैं, सामने नहीं बोलेंगे लेकिन बाहर झूठ बोलेंगे। हाँ आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब में है, व्यवसाय कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है वहां कई बार झूठ बोलना पड़ता है ना। कोई बोले बिजनेसमैन को कि झूठ नहीं बोलो तो फिर उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन ये वैष्णव समाज में भक्तों में आपस में जो रिश्ता है भक्तों के बीच में, उसमें ध्यान रखना चाहिए कि भक्तों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं जैसे एक बार हमारे गुरु महाराज ने बताया था कि जो अपने गुरु को झूठ बोल सकता है वो संसार में कोई भी गलत काम कर सकता है। ठीक है, तो ये अपराध लगता है। अर्चक वगैरह के समक्ष ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि वास्तव में कुछ ऐसे स्थान है जहां पर हम चर्चा कर सकते हैं। एक है मंदिर, एक है पार्क, एक सिनेमा हॉल, कैसी जगह है, स्थान है जहां पर आपस में हम बातें कर सकते हैं, घर की बातें कर सकते हैं, लोग करते हैं। तो मंदिर में आके लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, मंदिर में ही चर्चा करते हैं वो। मंदिर उनको लगता है ऐसा स्थान है जहां पर चर्चा करना चाहिए, वो भी डीटीस के सामने, उनको लगता है नहीं सामने भगवान खड़े हैं। उसी से हम मजाक करना है, उसी से हमें बातें करनी है, उसी से हमें प्रचलपा करना है, यानी कि हमें डीटीज का प्रेजेंस फील ही नहीं हो रहा है कि सामने डीटीज हैं, डीटीज के प्रति श्रद्धा ही नहीं है। इसका मतलब अभी हम कनिष्ठ अधिकारी भी नहीं बने, क्योंकि भागवत क्या बताता है कि कनिष्ठ अधिकारी वो है जिसकी श्रद्धा है अर्चक वगैरह की सेवा में। तो ये तो कोई श्रद्धा प्रकट नहीं कर रहे हम, श्रद्धाहीन लोग जो है वो वगैरह के सामने बात करते हैं आपस में। कृष्ण कथा के अतिरिक्त कोई बातें नहीं होनी चाहिए वहां पर। हाँ कृष्ण से संबंधित हो वो अलग बात है, उनसे संबंधित कोई सेवा है जो उसमें जरूरी है बात करना, वो ठीक है। अन्यथा कोई ग्रामीण कथा प्रजलपा नहीं होना चाहिए, प्रजलपा करना वैसे भी ठीक नहीं है, विग्रह के सामने तो सेवा अपराध में आ जाता है। अच्छे विग्रह के समक्ष रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये इसलिए रूप गोस्वामी ने लिखा है क्योंकि साहित्या लोग ऐसा करते हैं, वो भाव भक्ति प्रकट करते हैं, तथाकथित भाव भक्ति के लक्षण, भाव भक्ति में होते नहीं है, रो रहे हैं जोर जोर से, प्रभुपाद कहते हैं बाहर आकर बीड़ी पी रहे हैं, विग्रह के सामने रो रहे हैं और बाहर आकर बीड़ी पी रहे हैं। लेकिन वास्तव में अगर कोई रो रहा है तो वो दिखावा नहीं करेगा। आज हम लोग पढ़ रहे थे प्रभुपाद का एक कोट, प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये रो रहा है ना वो सब लोग नहीं समझ सकते हैं, महाप्रभु तो रो ही रहे थे हमेशा कृष्ण के लिए, है ना। तो मायावादी लोग इसको नहीं समझ सकते, प्रभुपाद कहते हैं ये रोने में भी कितना आनंद हो सकता है, प्रभुपाद का एक कोट हमने पढ़ा था आज। तो रोता भक्त इसलिए है भगवान से विरह के कारण, भक्तों से विरह होता है, कृष्ण से विरह होता है, तो उस समय वो रुदन करता है। उस अवस्था में है तो उसमें कोई अपराध नहीं है, लेकिन ऐसे ही रोना ये दिखाने के लिए कि हम कितने ऊंचे भक्त हैं, और तभी रोना जब सब लोग खड़े हैं, वो अपराध है। इसे प्रभुपाद जैसे महान आचार्य वैष्णव लोग भी वो रोते नहीं थे विग्रह के सामने, प्रयास यही करते थे कि आंखों से आंसू ना निकले, कई बार निकल जाता था, प्रभुपाद नहीं काबू कर पाते थे। जब प्रभुपाद राधा माधव गा रहे थे, राधा माधव कुंज बिहारी मायापुर में एक बार प्रभुपाद रोए, और उसके बाद लॉस एंजलिस में दो बार हुआ शायद, और एक बार पहली बार जब प्रभुपाद ने राधा माधव कुंज बिहारी गाया गोरखपुर में 71 में, तो वहां पर भी प्रभुपाद गाते गाते पहले लाइन में ही प्रभुपाद गाकर चुप हो गए। तो वहां पे एक प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे कौशल्या माता जी, जिन्होंने बताया था अभी रीयूनियन हुआ था ना बॉम्बे में, एक फेस्टिवल हुआ था, याद नहीं कौन से साल में था, ये कुछ सालों की बात पहले की बात है। तो वहां हम गए थे, तो वहां पे माता जी ने बताया कि प्रभुपाद कहते हैं सी कृष्णा इज हाइडिंग with Radharani in the bushes. Prabhupada ऐसे मतलब गा के चुप हो गए और प्रभुपाद वहां लाइट चले गया, अचानक अंधेरा सा हो गया, तो प्रभुपाद ये बोल रहे हैं तो माता जी ने सुन लिया. तो प्रभुपाद जो गा रहे हैं वो प्रभुपाद देख रहे हैं, तो इसलिए प्रभुपाद आगे गा नहीं पाए थे. तो ऐसे कुछ एक आध ऐसे इंसिडेंट है जैसे प्रभुपाद रोए जरूर, लेकिन साधारणतः प्रभुपाद ने इसको इस बात को इतना महत्व नहीं दिया. जब प्रभुपाद से पूछा मायापुर में प्रभुपाद क्या हुआ, आप एकदम स्तब्ध हो गए, स्टंड हो गए, क्या कारण था इसका, प्रभुपाद ने कहा जस्ट चैंट हरे कृष्ण. मतलब प्रभुपाद ने कहा कोई इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है, आप जो चैंटिंग करो बस. तो इसलिए जो वैष्णवाचार्य लोग हैं इस बात को प्रकट नहीं करते हैं, रोना धोना दिखाते नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, जो प्राकृत भक्त हैं वो उसकी नकल करके जो वैष्णव समाज में उत्पात मचाएंगे और इससे साहिज्या इज्म को बढ़ावा मिलता है. तो इस कारण से नहीं किया जाता, इस कारण से यहां पर मना किया गया है. आचार्य वगैरह के समक्ष लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, बाहर भी नहीं झगड़ा करना है, लेकिन ये वगैरह के सामने भी नहीं करना चाहिए. आचार्य वगैरह के समक्ष किसी को डांटना नहीं चाहिए, डांटना तो किसी को कमरे में ले जाओ. वैसे ही पब्लिक में नहीं डांटना चाहिए, बोलते हैं ना पब्लिक में आपको प्रशंसा करें और अलग से ले जाके डांटो, सबके सामने नहीं डांटना चाहिए, और डांटना ही है तो अलग से ले जाओ कमरे में. सबके सामने आप तारीफ करो लेकिन अलग से आप ले जाओ डांटने के लिए. विग्रह के सामने तो डांटना नहीं चाहिए, ठीक है. अक्षय विग्रह के समक्ष भिखारियों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए, मतलब ये नहीं दिखाना चाहिए कि हाँ मैं देने वाला हूं, मैं दान दे रहा हूं, है ना, मैं ही इन लोगों का रक्षक हूं, पालक हूं, है ना. भगवान सभी जीवों को खिला रहे हैं लेकिन उनके सामने क्या दिखा रहे हैं कि हम खिला रहे हैं, ये भाव प्रकट हो जाता है फिर इसमें प्रभुत्व की भावना. तो ये भगवान के सामने हमेशा दास की भावना, सेवा की भावना बनाए रखना है. आचार्य वगैरह के समक्ष अन्यों से बहुत कटु वचन नहीं बोलने चाहिए. आचार्य वगैरह के समक्ष रोएदार कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए, फर ब्लैंकेट. फर ब्लैंकेट जो होता है वो जो है जानवर से निकाला जाता है, फर ब्लैंकेट जो है वैसे भी नहीं पहनते हैं डिवोटीज, तो ओढ़ना नहीं चाहिए. आचार्य वगैरह के समक्ष किसी अन्य की स्तुति या बड़ाई नहीं करनी चाहिए. लेकिन एक बात है कि भक्तों की स्तुति की जाती है, उनका संबंध क्योंकि भगवान से है, भगवान से उनका संबंध स्थापित करते हुए या भगवान से उनका संबंध जोड़ते हुए हम उनकी प्रशंसा करते हैं. देखिए आपके कितने शुद्ध भक्त हैं, आपके कितने अच्छे सेवक हैं, आपकी सेवा में लगे हुए हैं, इस तरह से कहकर आप उसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं. आप अलग से नहीं तारीफ कर रहे उनकी, लेकिन उनका संबंध भगवान से जोड़ रहे हैं, ठीक है. इसलिए भक्तों का संबंध क्या है, भगवान से ही होता है. अर्चय विग्रह के समक्ष किसी अन्य की स्तुति नहीं या बड़ाई नहीं करनी चाहिए. अर्चय विग्रह के समक्ष किसी को गाली नहीं बकनी चाहिए. अर्चय विग्रह के समक्ष अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए. अपने साधनों के अनुसार अर्चय विग्रह की पूजा करने से चूकना नहीं चाहिए. जितनी आपकी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार करना चाहिए सेवा. अगर आपके पास धन है, क्षमता है, शक्ति है, तो करना चाहिए. भगवान के सामने खाली हाथ नहीं आना चाहिए, गुरु वैष्णव के सामने खाली हाथ नहीं आना चाहिए. गुरु से जब मिलने जाते हैं खाली हाथ नहीं आना चाहिए. पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसलिए भगवान कह रहे यो मैं भक्त्या प्रयच्छति. राधा पार्षार्थी के पास जा रहे दर्शन करने, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सेवा की जो भावना को व्यक्त करना होता है, मन में नहीं रखना चाहिए. जैसे कि आज अच्छा मार गुरु महाराज का स्वागत कर रहे थे सब लोग कीर्तन के साथ, तो प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि क्या जरूरत है इस सब की, प्रभुपाद ने कहा हाँ जरूरत है, कि दिखावा क्या मन में करोगे. तो गुरु का स्वागत करना चाहिए और ये भाव प्रकट करना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं. लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि केवल वही करना चाहिए, सिर्फ और सेवाएं भी करनी चाहिए, फिर उनकी आज्ञा का पालन भी करना चाहिए, लेकिन ये भी करना आवश्यक होता है। कहते हैं कि गुरु जब आते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए, और जब जाते हैं तो उनको छोड़ने जाना चाहिए जहां तक वो जा रहे हैं, जैसे गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं तो गाड़ी तक छोड़ने जाना चाहिए। ये है, ये हरिभक्ति लास्ट में दिया है, ये शास्त्रों का प्रमाण है इसमें। तो इस तरह से भगवान प्रसन्न होते हैं कि उनके भक्त का स्वागत किया जा रहा है, इससे राधा पारसार्थी खुश होते हैं। नहीं तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो स्थान जो है फिर स्मशान भूमि से कम नहीं है। इसका मतलब क्या है, वहां सब जीते हुए भी समरे हुए हैं सब, इसलिए बहुत जरूरी है इन भावनाओं को हमें प्रकट करना चाहिए। और आगे लिखा है तो कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। लेकिन जैसे दवाई है, औषधि है, आयुर्वेद में लिखा है, यहां तक ही लिखा हुआ है, अथर्वेद का ही अंग है आयुर्वेद, तो उसमें लिखा है कि जब दवाई लेते हैं तो उस समय भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए दवाई ग्रहण करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। अब ये तो नहीं कि दवाई का भोग लगाएंगे हम लोग, लेकिन ये बताया कि दवाई लेते हुए भगवान का स्मरण करते हुए हम लोग दवा ग्रहण करते हैं, ऐसा उसमें भी लिखा है, आयुर्वेद में भी लिखा हुआ है। ऋतु के अनुसार कृष्ण को ताजे फूल तथा अन्न अर्पित करने से चूकना नहीं चाहिए, ताजा फल होना चाहिए। आजकल क्या है समस्या कि सब इंजेक्टेड फ्रूट्स हैं, जबरदस्ती पकाया जाता है, ताजा तो मिलता नहीं कुछ, सब समय सब कुछ मिल जाता है ना, ठंड के मौसम में भी आम मिल जाता है, लेकिन आम का भोग नहीं लगाना ठंड के समय में। सीजनल फ्रूट्स, ताजा फल होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। कच्चा केला ऑफर कर रहे हैं या कच्चा सेब ऑफर कर रहे हैं, तो ये सब पहले देखना पड़ेगा जब खरीदने जाते हैं मंडी में, जो भी जा रहा है खरीदने, सब्जी दुकान में जा रहा है खरीदने के लिए जा रहा है, तो उनको देखना पड़ेगा कि वहां पे जो भी ले रहे हैं वो ऑफर करने लायक है कि नहीं। सड़ी हुई चीज थोड़ा भगवान को अर्पित करेंगे आप, है ना, ताजा चीज होना चाहिए भगवान को अर्पित करने के लिए। नहीं, इसमें मेन भाव ये होना चाहिए कि हम भगवान को भोग लगाएं, आप श्री विष्णु करिए या हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, लेकिन मेन बात यह है कि हमारी भावना होनी चाहिए कि सबसे पहले भगवान इस भोग को स्वीकार करें और उसके बाद ही हम लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। साधारणतः जैसे आप यात्रा में हैं तो वहां पर संभव नहीं है, और हर जगह आपको तुलसी भी मिलेगी नहीं, तो उस समय आप स्मरण करते हुए भगवान को भोग लगा सकते हैं। लेकिन जहां पर तुलसी है तो तुलसी दल के साथ ही भोग लगाना चाहिए, बिना तुलसी के भोग नहीं लगता वास्तव में। इसलिए भगवान ने गीता में जो पत्रम बोला है वो पत्रम का मतलब ही है तुलसी, तो तुलसी के साथ ही भगवान जो है भोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि वास्तव में हम लोग भगवान को भोग लगाने के लायक नहीं है, ये कारण है। तो गीता भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्त्या उपरितम, दो बार बोला है भगवान ने, अष्टामी प्रयत आत्मना, प्रेम और भक्ति से जो मुझे भोग लगाता है। तो हमारे हृदय में कितनी भक्ति है, प्रेम है भगवान के लिए, जिससे प्रत्यक्ष भगवान हमसे ही भोग स्वीकार कर ले, तो तुलसी दल को देखकर भगवान भोग को स्वीकार करते हैं। इस कारण से नहीं, लिखा हो या ना लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मंत्र का उच्चारण कुछ भी करते रहिए, लेकिन महत्वपूर्ण बात हम जो बता रहे हैं वो समझने का प्रयास करें आप, कि आप जो भोग लगा रहे हैं उसके पीछे भक्ति होनी चाहिए, भक्ति भावना होनी चाहिए, जिसके बाद भक्ति की भावना है वो मंत्र का उच्चारण करे ना करे भगवान उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि मंत्र अपने आप में रिचुअलिस्टिक नहीं होना चाहिए, मेन थिंग होनी चाहिए श्रद्धा और भक्ति, है ना। भोग लगा रहे हैं, 5 मिनट में निकाल दिया, खुद तो खाएंगे आधा घंटा बैठकर, है ना। और लेके आना हलवा, लेके आना जलेबी, लेके आना थोड़ा और डालो। और जब भगवान को भोग लगाते हैं तो 5 मिनट में निकाल देते हैं, जल्दी करो जल्दी करो, हमें प्रचार में जाना है। और जो खुद बैठेंगे आधा घंटा तब प्रचार में नहीं जाना। तो जिस तरह से हम खाते हैं, जितना समय हम देते हैं, कम से कम 15 मिनट जो है भोग लगना चाहिए भगवान को। और पुजारी अगर है कोई, घर में भोग लगा रहे हैं, अगर आपकी कोई सेवा चल रही है घर में, इसलिए विग्रह की सेवा तभी हमें शुरू करनी चाहिए जब ठीक ठीक कर सके। विग्रह की सेवा एक फैशन बन चुका है आजकल, एक बहुत बड़ा बोझ समझकर विग्रह की सेवा की जा रही है। इसलिए हमारे जो आचार्य लोग हैं इतनी जल्दी उत्साहित नहीं करते हैं डीटी वर्शिप के लिए। इसलिए कहते हैं अगर आप मंदिर के पास में रह रहे हैं तो मंदिर में आके यहाँ पे सेवा करो। राधा पार्षद की सेवा तो कर नहीं रहे और अलग सेवा शुरू कर दी, वो भी बोझ समझ कर, तो क्या फायदा। तो इसलिए क्या है कि महत्वपूर्ण बात उसमें श्रद्धा की है। और पुजारी को चाहिए जब भोग लग रहा है तो वहां से हिले नहीं हो। वो पुजारी प्रमाणिक है जो वास्तव में हमेशा विग्रह के साथ रहता है, प्रभुपाद ने बोला है, वो असली पुजारी। ये नहीं विग्रह को छोड़ दिया अकेले, आप जरा खा लो मैं थोड़ा सो के आता हूं, है कि मैं यहाँ थोड़ा गप मार के आता हूँ, किसी से बात कर लो, मेरा फोन कॉल आया है, किसी को फोन करना है बहुत जरूरी, आप जब तक खाते रहो। तो पुजारी वो है जब भोग लग रहा हो तो दरवाजे के बाहर बैठकर वहां बैठा रहे, और या तो वहां गायत्री करे या महामंत्र का जप करे या स्तुति करे भगवान की। ये है तरीका। ये जितने भी अर्चन विग्रह के, अर्चन विग्रह से संबंधित जो भी नियम है, मंत्रों का उच्चारण करना, सब कुछ, इस सबके जो पीछे भावनाओं को समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। पुजारी बनने से पहले उस डीटी वर्शिप का जो फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है वो जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही डीटी वर्शिप शुरू करना चाहिए। नहीं तो आप केवल यही सीखेंगे कि अगरबत्ती 7 बार घुमाओ, दीपदान 5 चरण में इतनी बार करो, कमर में इतनी बार करो, बस यही सीख के आ जाएंगे। इसके वजह क्या फिलॉसफी है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी आइडिया नहीं। और कुछ दिन तो अच्छा लगेगा, 1 साल के बाद लगेगा क्या है ये घुमा रहा हूं अगरबत्ती, बस कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि आपका फिलॉसफिकल अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है, फिलॉसफी क्लियर नहीं है, आप किस लिए ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। पुजारियों के लिए तो प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ना बहुत ही जरूरी है। विग्रह की जो सेवा में लगा हुआ है उसके लिए फिलॉसफी जानना बहुत जरूरी है, तब वो ठीक से विग्रह की सेवा भी करेगा। ऐसे तो कुछ समय के बाद विग्रह को बिल्कुल चीप ले लगे और साधारण मूर्ति की तरह उनकी सेवा होगी। विग्रह के सामने गपशप करेंगे, उन्हीं के सामने मजाक भी करेंगे, उनके सामने झगड़ा भी करेंगे, है ना। और भोग लगाने के बाद कहीं गायब हो जाएंगे और धीरे धीरे ऐसे स्टैंडर्ड गिर जाता है डीटी वर्शिप का। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग इन बुक्स को अच्छी तरह से पढ़ें और डीटी वर्शिप के पीछे जो फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग है उसको बिल्कुल हम क्लियर करें कि ऐसा क्यों होता है। हर चीज के लिए प्रश्न पूछना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए, क्यों मैं अगरबत्ती दिखा रहा हूं, है ना, क्यों मैंने दीपदान किया है ना, भोग लगाने के लिए मंत्र क्यों है, इन मंत्रों का ही उच्चारण क्यों हो रहा है यहां पर, सबसे पहले मुझे आसन ग्रहण क्यों करना चाहिए, मैंने घंटी क्यों बजाई दरवाजे में सबसे पहले प्रवेश करने से पहले, मेरे को आचमन करने के लिए क्यों कहा गया, ये सबका सबका प्रश्न मिलने का उत्तर मिलना चाहिए। उत्तर नहीं है अगर आपके पास तो फिर आप कुछ दिन तक पूजा करोगे, सेवा करोगे, कुछ समय के बाद छूट जाएगा। सिद्धांत बोलते ना, सिद्धांत बोलिया करे ना आलस, सिद्धांत को समझना कभी आलस नहीं दिखाना चाहिए। डीटी वर्शिप आलसी लोगों के लिए नहीं है, और आलसी का मतलब यहां पर यह है जो फिजिकली तो बड़ा एक्टिव होगा लेकिन अगर फिलोसफिकली एक्टिव नहीं है तो फिर भी वो आलसी है, क्योंकि उसका स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर नहीं है। इसलिए उसका जो एक्सटर्नली एंगेज होना, फिजिकल सेंसेस को लगाना केवल अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इसलिए भावनाओं को समझना जरूरी है जो कि सिद्धांत के ऊपर आधारित होना चाहिए। शास्त्र सिद्धांत के ऊपर होना चाहिए। हमारी श्रद्धा को कहते हैं शास्त्रीय श्रद्धा, लौकिक श्रद्धा नहीं है। लौकिक श्रद्धा का मतलब होता है लोग जाते हैं जी चढ़ावा करना है हमें जी, कुछ हमें भोग लगवाना है, छप्पन भोग कराना है, या घर में मंदिर बना लिया, एक पंडित जी को रख लिया, अग्रवाल परिवार के यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपने मंदिर बनाया घर पे, है ना, वहां पर आपने एक पुजारी हायर करके रखा हुआ है, वही भोग लगाएगा, वही ड्रेसिंग करेगा, आप जाते हैं सिर्फ दर्शन करने के लिए, है ना, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। तो आपके लिए डीटी वर्शिप क्या है, फैशन है। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे आपने घर में कुत्ता रखा हुआ है, इट इज एज गुड एज कीपिंग ए डॉग। तो बेटर टू कीप अ डॉग देन टू सर्व अ ड्यूटी लाइक दिस। आप समझ रहे, कोई फायदा नहीं, ये सब दिखावा है, आडंबर है कि लोगों दिखा रहे हैं ड्यूटी वर्शिप कर रहे हैं, हमारे घर में ठाकुर जी हैं। आज तक मैंने कभी अगर उनके सामने दीप नहीं दिखाया, दीपदान नहीं किया, कभी मैंने उनके वस्त्र नहीं बदले, कभी स्वयं कभी भोग नहीं लगाया, सब करवाया मैंने नौकरों से, तो ऐसा अच्छा कुत्ता रख लो, वो ज्यादा अच्छा है ना, है कि नहीं, उसको घुमाने ले जाओ कम से कम, जब मल मूत्र त्यागेगा तो साफ करोगे खुद, वो ज्यादा अच्छा है। तो डीटी वर्शिप इज बिकमिंग अ जोक नाउ, आजकल डीटी वर्शिप मजाक बन गया है। उससे अच्छा है कि सबसे पहले हम लोग चित्र रखें, भगवान का चित्र रखें, ऑल्टर रखें, और देखें कि हम लोग क्या चित्र में जो धूल जमी है उसको साफ कर पा रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप है, और ये नहीं हो रहा है तो डीटी वर्षा आप भूल जाइए, क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड ये है कि फोटो में जो धूल जमी है उसको साफ कर पा रहे हैं कि नहीं हम, सबसे पहले रोज। और ये नहीं हो रहा है तो डीटी वर्षा आप मत करिए, अच्छा है कुछ पुस्तक पढ़िए और कुछ प्रचार करिए, वही अच्छा है। तो ये यहाँ पर इसी बात को, इसलिए सब इतनी सारी बातें बताई जा रही है, ये नेक्ट्रो डिवोशन में जो बताई गई बातें हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई भक्त बोलते हैं नेक्ट्रो डिवोशन की जो क्लासेस हैं वो बहुत एसोटॉरिक है, और ये उन लोगों के लिए जो जो सीनियर हैं, पुराने लोगों के लिए, नए लोगों के लिए सेवा अपराध लागू नहीं होता। आपको इन क्लासेस से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आपके लिए प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं होते हैं। आप जब पुराने हो जाओगे तब आपके पर सेवा प्राण लगेगा, तब आप ये सब सीखना। लेकिन याद रहे जो नेक्टर डिवोशन के पहले 19 चैप्टर्स हैं वो नया हो या पुराना हो सबके लिए हो। अगर नए व्यक्ति को आप नहीं बताओगे जो भक्ति में सीरियस होना चाह रहा है तो कैसे वो भक्ति में आगे बढ़ेगा, और वो जो अपराध कर रहा है वो उसको ना लगकर आपको लगेगा क्योंकि आप उसके लीडर हैं सो कॉल्ड, और ना आप चाहते हैं कि उसको ट्रेनिंग मिले, तो किस तरह के लीडर हो गए फिर आप। तो इसलिए नेक्ट्रो डिवोशन जो है सब्जेक्ट, इसलिए प्रभुपाद ने कहा दिस नेक्ट्रो डिवोशन इज अ लॉ बुक ऑफ इस्कॉन। लॉ जो है सबके लिए होता है शहर में, अब लॉ ये थोड़ा होता है कि नहीं नहीं यहां पर जो कुछ लोग रह रहे हैं इन लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। जो नए लोग आए हैं दिल्ली में उनके लिए ट्रैफिक रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं, वो कैसे भी चलाए। तो दिल्ली पुराने लोग हैं 20 साल से रह रहे हैं उन्हीं के लिए है सिग्नल्स, ऐसा होता है कहीं? कहीं भी नहीं होता ऐसे। लॉ सबके लिए होता है और ये लॉ सबके लिए है, इसलिए इस ग्रंथ को पढ़ना बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि भाव भक्ति के बारे में आप अध्ययन करें, लेकिन ये कोई भाव भक्ति की बातें नहीं हो रही है, ये वैदिक भक्ति के नियम है और ये सबके ऊपर लागू होते हैं। और जो इसके बारे में जानकारी नहीं रख रहा है वो तो जानता ही नहीं कि भक्ति कैसे कर रहा हो। वो 20-25 साल 30 साल बीत जाएंगे उसको बेसिक्स नहीं पता होगा, ये सब कभी फॉलो ही नहीं किया उसने, तो कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे। जब तक अपराध होते रहेंगे हम कैसे ठीक तरह से हरिनाम ले पाएंगे। नाम अपराध बड़ा भयंकर होता है, यहां तक बताया यही हरिनाम जो है हमारा संहार कर देता है। अपराधों से बचना बहुत जरूरी है। तो यहां पर आगे क्या बता रहे हैं देखिए, भोजन बन जाने के बाद जब तक उसे अर्चे वगैरह को अर्पित ना कर दिया जाए तब तक उसे किसी को नहीं देना चाहिए, अर्चे वगैरह की ओर पीट करके नहीं बैठना चाहिए। कई बार टेम्पल हॉल का सिचुएशन ऐसा होता है, लोकेशन ऐसा होता है जैसे हेक्सागोनल शेप में है, जहां पता ही नहीं चलता है कि कहां पे एंड है, चारों तरफ से घुमा हुआ जैसे हमारा टेम्पल हॉल, तो वहां थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल होता है कई बार, डीटी की तरफ पीठ चला जाता है, जैसे गुरु पूजा के टाइम में भी पीठ चला जाता है पीछे। लेकिन अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए, जहां तक संभव हो हम लोग पीठ ना दिखाएं, क्योंकि आप ये कारण नहीं दे सकते हमेशा, क्योंकि रूम ऐसा है, हॉल ऐसा है, इसलिए हमेशा मैं पीठ दिखा कर ही खड़ा रहूंगा। जबरदस्ती पीठ दिखा के खड़ा नहीं होना है, मजबूरी में वहां पर ऐसा सिचुएशन है कि हॉल भरा हुआ है और आपकी पीठ जाएगी जाएगी पीठ लेडीज की तरफ, तो वहां ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें राधा पार्षदी भी समझते हैं इस बात को कि प्रभुपाद की गुरु पूजा चल रही है, तो यहाँ जगह ही नहीं जब प्रभुपाद सामने बैठे हैं और प्रभुपाद की पूजा हो रही है, तो उसमें अपने आप ही राधा पार्षदी आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पीठ दिखाकर खड़े रहें राधा पार्षदी को हमेशा। ये मैंने नियम बना लिया है कि राधा पार्षदी को पीठ दिखा कर ही खड़ा हूँ, है ना। और ये सब जो नियम है खासकर लागू होते हैं, अधिकांश जो नियम है ये लागू होते हैं जब शिव विग्रह का दर्शन खुला होता है, ये भी ध्यान रखिए, ये उस समय लागू नहीं होते जब दर्शन बंद होते हैं। क्योंकि हमारा फिलॉसफी, हमारी फिलॉसफी क्या है, बहुत पर्सनल फिलॉसफी है, जब भगवान का दर्शन दिखाई देता है हम देखते हैं तो उस समय ये प्रिंसिपल से रूल्स लागू होते हैं। जब दर्शन बंद होते हैं तब परिक्रमा भी नहीं करते हम, भगवान को जब भोग लगता है उसमें परिक्रमा नहीं करना चाहिए, भगवान की जब आरती होती है तब परिक्रमा नहीं करना चाहिए, भगवान का जब शयन हो चुका होता है तब परिक्रमा नहीं करते हम। तो इन सब बातों का अच्छी तरह से ध्यान से हम समझना चाहिए हमें। और गुरु को चुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात नमस्कार करते समय उच्च स्वर से गुरु की स्तुति करनी चाहिए। तो यहां पर वही बात आ गई जो पहले हमने बताया था कि विग्रह के सामने किसी की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो यहां पर गुरु की प्रशंसा हम कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे कि श्री श्री राधा पार्षदी के अनन्य भक्त आए, उनके शुद्ध भक्त आए, है ना, आज उनका हमें दर्शन मिल रहा है, हम सब कृतार्थ हो गए उनका दर्शन पाकर। तो इस तरह से वो बात जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन बोधहीनता परस्परम नहीं होना चाहिए। बोधहीनता परस्परम जानते हैं क्या होता है, एक दूसरे को बोध करा रहे हैं हम अपने बारे में कि आप बहुत अच्छे हैं, आप वो भी बोल रहे हैं आप बहुत अच्छे हैं, राधा पार्षदी सामने खड़े भगवान कह रहे हैं मेरे बारे में बोध कराते हैं मेरे भक्त। लेकिन कई बार क्या होता है भक्त एक दूसरे के बारे में बोध करा रहे हैं बस, तो भगवान कहीं नहीं बीच में। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथ्यंत माम नित्यम, भगवान कह रहे माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं कि आप मेरी तारीफ करोगे तो मैं आपकी तारीफ करूंगा, है ना, यू स्क्रैच माय बैक आई विल स्क्रैच योर बैक, कहां पर, इन फ्रंट ऑफ द डीटीज खासकर। तो वहां पर केवल भगवान की प्रशंसा होनी चाहिए, भगवान का गुणगान होना चाहिए। तो ये एक बात है, गुरु के समक्ष उनकी कुछ प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए, गुरु के समक्ष अपनी बड़ाई नहीं करना चाहिए, अपनी सेवा की प्रशंसा करना, तारीफ करना कि कितने हमने कितने झंडे गाड़े हैं, कितना बड़ा प्रचार कर दिया हमने। हाँ, गुरु आपसे रिपोर्ट ले रहे हैं और गुरु आशा कर रहे हैं कि आप उनको रिपोर्ट दें अपने प्रचार का, सेवा का, वो जरूरी होता है क्योंकि वहां गुरु स्वयं पूछ रहे हैं। लेकिन गुरु के पास इस भावना से नहीं जाना चाहिए कि मैं अपना गुणगान करूं कि मैंने क्या क्या कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैं, है ना। गर्वित भावना से गुरु के पास नहीं जाना चाहिए अपने को कर्ता समझते हुए, क्योंकि हमें समझना है कि जो हम प्रयास भी कर पा रहे हैं वो भी गुरु की कृपा से हो रहा है, कृष्ण की कृपा से हो रहा है। प्रयास भी नहीं कर सकता कोई भक्त जब तक उसके ऊपर गुरु और कृष्ण की कृपा ना हो, और ऐसे प्रयास से फिर कृपा मिलती है, तब कृष्ण प्रेम मिलता है ना। जब तक कृपा नहीं होगी गुरु की, हम प्रयास भी शुरू नहीं कर सकते हैं, सेवा भी शुरू नहीं कर सकते हैं। हम भगवान सेवा से थोड़ा स्वीकार कर लेते हैं सबकी, भक्तों की सेवा। तो अगर भक्त की सेवा स्वीकार की जा रही है तो वो भी कृपा के कारण हो रहा है, ये जानना है, मैं इस बात को समझना। इसलिए अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए गुरु के सामने, ये शिष्टाचार के विरुद्ध है। अर्चन करके समक्ष देवताओं का उपास नहीं करना चाहिए। ये 32 अपराधों की सूची है। इनके अतिरिक्त अपराधों की बहुत बड़ी संख्या है जिनका उल्लेख वराह पुराण में हुआ है। समय क्या है? अंधेरे कमरे में अर्चे वगैरह को नहीं छूना चाहिए। इसलिए सबसे पहले आचमन करने के बाद जब ऑल्टर में प्रवेश करने से पहले दरवाजा खटखटाते हैं, नॉक करते हैं और बाहर गुरु को प्रणाम करते हैं और इस तरह से कृपा मांगते हुए याचना करते हुए हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं और जाते अंदर प्रवेश करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, लाइट डालते हैं। ये तरीका है। अर्चे वगैरह के पूजन की विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए जो कि दिया गया है पंचरात्र की विधि, नारद पंचरात्र, हरि भक्ति लास पर श्री सनातन गोस्वामी ने दिया हुआ है। तो इन सबको अच्छी अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और प्रशिक्षित होकर अच्छी तरह से फिलॉसफी को समझते हुए फिर हम लोग प्रवेश करें। और कुछ ना कुछ ध्वनि किए बिना देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो बाहर घंटा लगा हुआ है, या घंटा नहीं लगा हुआ, घंटी नहीं लगी हो तो दरवाजा खटखटा के अंदर जाना चाहिए। किसी की आप घर में घुसते हैं ऐसे ही थोड़े चले जाते हैं घर के अंदर, दरवाजा खोल के आप कमरे में जाके बैठ गए तो क्या सोचेगा व्यक्ति, कहाँ कौन घुस गया अंदर, है ना। तो पहले आप नॉक करते हैं, ये तो सामान्य शिष्टाचार है। तो मंदिर में जब जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं तो पहले नॉक करना चाहिए ताकि राधा पारसार्थी भी देखें कि सामने आप आए हैं। ये पर्सनलिज्म है, ऐसा नहीं कि राधा पारसार्थी जानते नहीं, वो तो भगवान है, वो तो पहले से जानते हैं कि कौन आया है। लेकिन यहाँ पर हम क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, पर्सनलिज्म एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये बात समझेगा कि वैष्णव फिलॉसफी है जहां पर हर कदम में पर्सनलिज्म आता है। तो इस कारण से भावना को प्रकट करने के लिए हम लोग इस प्रकार करते हैं कि हम घंटी बजाते हैं नॉक करते हुए, तब जाके और जयकारा करते हुए राधा पारसार्थी की जय बोलते हुए फिर हम लोग प्रवेश करते हैं मंदिर के भीतर। कुत्ता या कुत्तों या निम्न पशुओं द्वारा देखा गया भोज्य पदार्थ अर्चे वगैरह पर नहीं चढ़ाना चाहिए। यानी कि जब भी कोई भोग सागर सामग्री है जो डीटी किचन में बनाया गया या आपके घर में किचन में बना रहे हैं आप और आप ऑल्टर तक ले जा रहे हैं तो उसको ढक के ले जाना चाहिए पूरा। सबसे पहले उसे कौन देखेंगे, भगवान देखेंगे, है ना, क्योंकि आपके देखने के लिए नहीं है वो, और ना वो दर्शन कराने के लिए, क्योंकि आप दर्शन करा भोग लगाने से पहले ही लोग क्या करेंगे, फिर भोग लगा लेंगे, बोले कि वाह आज तो केक बना है, पेस्ट्री बनी है, रसमलाई बनी है, जलेबी बनी है, क्या बात है, सिर्फ 15 मिनट की बात है उसके बाद हमें मिलेगा खाने। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, सेवा अपराध है। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी अपने आप को अपराधी सोच रहे थे कि उन्होंने केवल जी सोचा कि काश मैं ऐसा जो है खीर किसको भोग लगा सकूं, गोपाल जी को भोग लगा सकूं, कितना स्वादिष्ट होगा ये अमृत के लिए जो रखा हुआ था भोग लगाने के लिए। उसके बाद वो बहुत अपने आप को दोष दे रहे थे कि मैंने अपराध कर दिया कि भोग लगने से पहले मैंने ये सोच लिया, है ना। और ऐसा क्योंकि सोचा, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे भगवान के, गोपीनाथ जी ने उनके लिए अमृत के लिए खीर प्रसाद भिजवाया पुजारी के द्वारा, तो हमारे लिए तो राधा पार्वती ऐसा नहीं करने वाले हैं, है ना, कि हमारे लिए कोई बोले पुजारी ने, पुजारी को सपना आया, उन्होंने कहा राधा पार्वती ने मुझे कहा आपको प्रसाद देने के लिए, ऐसा होता है कभी? तो इसलिए हमेशा ढक के रखना चाहिए और जब तक भोग ना लग जाए पुजारी के अतिरिक्त किसी को देखना नहीं चाहिए। और पुजारी को इसलिए बहुत सतर्क होना पड़ेगा, इसलिए पुजारी की जो चेतना है उसकी भावना बहुत शुद्ध होनी चाहिए। अगर उसके अंदर हृदय में उसके अंदर भोगने की भावना है और पहले से वो भी ऐसे ही सोच रहा है तो उसको भी अपराध लगेगा। और व्यंजन भी इसलिए बना रहा है वो अगर किचन में बहुत सारे कि आप खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है ना, और यहीं पर हम लोग आराम से बैठ के खाएंगे, ये सब हमारे लिए, तो ये सब जो है सेवा अपराध में आ जाता है। इसलिए गुरु क्या होते हैं, बड़े दक्ष होते हैं, वो बोलते जाओ इस सब को आप बेच दो, सेल कर दो उसको। प्रभुपाद ने बोला है, प्रभुपाद नहीं बोला ये, प्रभुपाद के टाइम में भी ऐसा ही था कि नाना प्रकार के आइटम्स बनते थे, तो प्रभुपाद ने काफी एक्स्ट्रा बन रहा है तो इसको हम लोग राधा पारसार्थी महाप्रसाद को हम लोग सेल कर सकते हैं, जैसे वृंदावन में किया जाता है, बंबई में किया जाता है, अब दिल्ली में भी शुरू हो गया, नहीं तो क्या होगा, ऐसे पुजारी जो सेवक हैं वो बिगड़ जाएंगे, स्वादिष्ट व्यंजनों के प्रति हमारे आसक्ति बढ़ जाएगी। भालो ना खाई भो, ये बोला है महाप्रभु ने, ना खाई भो। तो अगर आप फिर इस इन्हीं व्यंजनों से आकर्षित हो जाएंगे, जब ये व्यंजन नहीं होंगे तो आप तड़पेंगे और इसको खाने के लिए आप दर दर भटकेंगे। जीवार लाल से ही उती धाय शिष्टोदर प्राण कृष्ण ना ही पाए, चैतन्य चरितार्थ में लगा शिष्टोदर प्राण, जीवा के लालसा के लोग इधर उधर भागता रहता है, कहाँ मिलेगा पनीर, कहाँ मिलेगी रसमलाई, कहाँ गया रसगुल्ला, इनसे ही हमें भिड़ा होगा फिर। और जिस दिन खिचड़ी प्रसाद होगा उस दिन हमारा दुख का दिन होगा, उस दिन फिर हम ये भजन दोबारा गाएंगे। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, है ना, क्योंकि भोगी भगवान है, हम नहीं है। भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान ने कहा मैं भोगता हूं, आपको महा महा प्रसाद मिलेगा बाद में, लेकिन अभी चिंतन मत करो, उसका विचार मत करो, अभी बाहर बैठकर भोग आरती गाओ, है ना, जो भक्ति ठाकुर ने लिखा है वो गाओ। ये यहां पर दिया है, पूजा करते समय मौन भंग नहीं करना चाहिए, यानी कि बातें नहीं करना चाहिए उस समय। लेकिन प्रभुपाद ने भी कहा है कि अगर कोई सामने आए, आप पूजा कर रहे हैं, अगर उसको आप कहते हैं हरे कृष्णा कह देते हैं तो वो गलत नहीं है, क्योंकि प्रचार के लिए हमेशा द्वार खुला हुआ है, उस समय कोई अपराध नहीं लगता है। आप पूजा कर रहे हैं और अचानक आप पीछे देखते कोई आ रहा है, आप उसको हरे कृष्णा कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हरिनाम तो हमेशा लिया जा सकता है, उसमें कोई अपराध नहीं लगता। लेकिन और कोई बातें नहीं होनी चाहिए वहां पर, और भिगड़े के सामने आपका जो अर्च भिगड़े की जो मुद्रा है वो भी स्थिर होनी चाहिए। नृत्य करते हैं भक्त बाहर ऑल्टर के बाहर, पुजारी के लिए नहीं है, ये पुजारी भी नृत्य करे भिगड़े की सेवा के साथ, नृत्य भक्तों को करना चाहिए, है ना। पूजा करते हुए आप खुद ना नृत्य करें, एक जगह स्थिर होकर जो है केवल जो मुद्राएं आवश्यक हैं उन्हीं मुद्राओं का उपयोग करना चाहिए, और बाकी जो भक्त हैं वो बाहर नृत्य करें, फिर कीर्तन करें। तो ये सब बहुत सावधानी से इस बातों को ध्यान रखना चाहिए। पूजा में व्यस्त रहते समय पेशाब या मल करने नहीं जाना चाहिए, यानी कि पहले से पेट साफ होना चाहिए, यानी कि विग्रह की पूजा करते हुए अगर आप इस तरह हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, फिर सेवा अपराध लगेगा, यानी कि आपने पानी पी लिया बहुत ज्यादा विग्रह की सेवा से पहले तो दिक्कत हो जाए, और ठंड के मौसम और समस्या हो जाती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा बहुत। कुछ फूल चढ़ाए बिना धूप दान नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फूल जो होता है ऑफर करते हैं गुरु को, राधा पार्षदी को, उसके बाद फिर आप अगरबत्ती दिखाते हैं। सुगंध रहित व्यर्थ फूलों को अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसे कई फूल होते हैं जिसमें सुगंध नहीं होता है, खुशबू नहीं आती है, क्योंकि दिल्ली में ऐसा है कि कई बार फूल ही ऐसे मिलते हैं जिसमें सुगंध होते ही नहीं, फूल मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, दुष्कर हो जाता है अच्छे अच्छे फूल। लेकिन बरसात के मौसम आते हैं फूल, ऐसे चमेली का फूल, रजनीगंधा, गुलाब का फूल तो हमेशा मिलता ही है, गेंदे का फूल कोई स्टैंडर्ड नहीं है, सच बताएं आपको, क्योंकि यहाँ पर कोई समझौता नहीं करेंगे, जब यहाँ शास्त्र की बात की जा रही है तो यहाँ समझौता नहीं करना चाहिए। गेंदे का फूल जो है वो सब स्टैंडर्ड है, वो हाई स्टैंडर्ड नहीं है, हाई क्लास स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि उसमें इतनी खुशबू नहीं होती, कम से कम गुलाब का फूल होना चाहिए, खुशबू आए इस फूल से। और जैसे काली की पूजा के लिए, दुर्गा की पूजा के लिए लाल रंग के फूल है वो नहीं चढ़ाए जाते हैं, अलग प्रकार के फूल होते हैं। प्रतिदिन दांतों को सावधानी से साफ करना नहीं भूलना चाहिए। मैथुन के बाद सीधे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। स्त्री को रजो दर्शन काल में स्पर्श नहीं करना चाहिए। शव को छूकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लाल नीले या बिना, यानी कि स्नान करने के बाद ही जाना चाहिए, लाल नीले या बिना धुले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। शव देखने के पश्चात मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। अगर देख भी लेते हैं आप तो वो दूषित करता है आपको। मंदिर के भीतर अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। मंदिर के भीतर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। स्वशान जाने के बाद मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अर्चक वगैरह के समक्ष डकार नहीं लेना चाहिए। जब तक भोजन पूरी तरह न पच जाए तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। प्रसाद लेने के बाद डकार आती है, डकार नहीं लेना चाहिए। इसलिए कम से कम आधे घंटे के बाद मंदिर में प्रवेश किया जाए, ऐसा बताया गया है। गांजा नहीं पीना चाहिए। अफीम या अन्य नशीली वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। शरीर में तेल लगाने के बाद अर्चक विग्रह के कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए, यानी कि स्नान करने से पहले लगाना चाहिए तेल, स्नान करने के बाद नहीं। तेल कोई इतना पवित्र नहीं है वस्तु, तो स्नान करने से पहले तेल लगाते हैं। अथवा अर्चक विग्रह के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए, यानी कि तेल लगाने के बाद। भगवान की श्रेष्ठता बतलाने वाले शास्त्र के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए। किसी विरोधी शास्त्र का सूत्रपात नहीं करना चाहिए, जैसा हमने पहले पढ़ा था। ये अर्चक वगैरह के समक्ष पान नहीं खाना चाहिए। गंदे पात्र में रखे फूल को नहीं चढ़ाना चाहिए। बिना आसन के फर्श पर बैठकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, अपितु आसन या गलीचे पर बैठना चाहिए। वास्तव में नियम तो देखा जाए, जैसे आप लोग जमीन पर बैठे हैं, जमीन पर पृथ्वी पर कभी भी सीधा नहीं बैठना चाहिए, हमेशा आसन लेके बैठना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बिना आसन के फर्श पर बैठकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। पूरी तरह स्नान किए बिना अर्चक वगैरह का स्पर्श नहीं करना चाहिए, यानी कि अगर आप बीमार हैं, आपको वायरल हो गया है, बोले ठीक है स्नान कर ले, थोड़ा बहुत स्नान कर लेता हूँ, हाथ धो लेता हूँ, पांव धो लेता हूँ, न वो नहीं चलेगा। आप बीमार हो, आराम करो, ठीक है ना। अपने मस्तक पर तीन रेखाओं का तिलक नहीं लगाना चाहिए, त्रिपूर्ण धारी नहीं बनना है। त्रिपूर्ण धारी जो है वो कौन होते हैं, अद्वैतवादी मायावादी लोग लगाते हैं त्रिपूर्ण तिलक। हम ऊर्ध्वपूर्ण लगाते हैं, वैश्व तिलक लगाकर ही हम लोग वगैरह के सामने जाते हैं। ये तो आपको राक्षस के रूप में देखा जाएगा, असुर। हाथ तथा पांव धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यहां पर लिखा है अन्य नियम इस प्रकार हैं। अवैश्य द्वारा पकाया गया भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए। कोई कर्मी बना रहा है या मायावादी बना रहा है, ढाबे से लेकर आ रहे हैं आप, उसको भोग लगा रहे हैं और जाने है ना। विषय अन्न खाए ले दुष्ट हो मन, विषयों के द्वारा अगर बना हुआ भोजन खाएंगे तो आपका मन दूषित हो जाएगा। मलिन मन होए बिना कृष्ण स्मरण, मलिन मन से आप कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाएंगे। महाप्रभु ने कहा है विषयों के द्वारा, रजोगुण में जो बहुत ज्यादा प्रभावित है, रजोगुण से तमोगुण से प्रभावित है, उनका निमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए, उनके घर जाकर नहीं भोजन करना चाहिए, ढाबे में नहीं खाना चाहिए, रेस्टोरेंट में नहीं खाना चाहिए। अच्छा जहर खा लो, जहर खाना अच्छा है बाहर ढाबे में खाने से, जहां पे लोग तंदूर की रोटी बना रहे टीवी देखते हुए या बीड़ी सिगरेट पीते हुए, वो अगर भोजन खाएंगे तो हमारे सपने, हमें भी सपने वैसे ही आएंगे, हम भी विषयी हो जाएंगे, फिर रजोगुण प्रवेश करेगा हमारे मन में। रथ यात्रा में आप या तो मंदिर से प्रसाद बनवा के ले जाओ अगर बहुत ज्यादा आप सतर्क हो, लेकिन ऐसी यात्रा में क्योंकि आप संकीर्तन में है, प्रचार में है, कई बार व्यवहारिक नहीं होता है कि हजारों लोगों के लिए कोई आप कुक ढूंढो आप कि एक ही कुक बनाएगा सबके लिए, वो प्रैक्टिकल नहीं होता है। लेकिन आप सामान्य साधारण बात बता रहे हैं, आपको रोज की बात चल रही है। यहाँ पर प्रभुपाद ने तो ऐसे जगह कहीं भी कई जगह पर उतारा भक्तों को, जहां पे कोई इस्कॉन का सेंटर ही नहीं था, जैसे लंदन भेजा प्रभुपाद ने 3 ग्रस्त भक्तों को, तो वहां तो कोई इस्कॉन का सेंटर नहीं था। अगर आप कुकिंग जानते हैं तो ठीक है, कुकिंग नहीं जानते तो क्या करोगे आप, और प्रचार के लिए आपको गुरु भेज रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि वहां तो लोग मीट खाते हैं, एक बार बोला किसी शिष्य ने, तो मीट खाओ लेकिन प्रचार में जाओ, नर्क में जाना ठीक है, मतलब नर्क जाना पड़ेगा। प्रभुपाद ने कहा ठीक है जाओ नर्क में, लेकिन जाओ प्रचार में। तो प्रचार जब करते हैं तो वहां पर आपको डिस्काउंट मिलता है, लेकिन रोज नहीं मिलेगा डिस्काउंट। इसका मतलब ये नहीं है डिस्काउंट के चक्कर में हम लोग अपना स्टैंडर्ड गिरा दें। प्रयास यही करना चाहिए कि हम लोग स्टैंडर्ड मेंटेन करें। कई बार देखा गया, कई रथयात्रा में गए कुछ लोग, और जब हम लोग पर्दे के पीछे गए जहां कुकिंग हो रहा था, पर्दे के पीछे होता था कुछ, तो पर्दे के पीछे जब गए तो वहां पर हमने देखा वो जब मैक्रोनी बना रहा था, कुछ बना रहा था वो लोग, है क्या जलेबी बना रहा था, नहीं और कुछ भी बना रहे थे वो, तो वहां पे एक सॉस का बॉटल रखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ है साफ ओनियन गार्लिक पाउडर करके, तो लिखा हुआ है वो उसने डाला है मैक्रोनी में डालने के लिए शायद। हाँ, कई ऐसे यात्रा में हमने देखा लोग पीढ़ी पी के बना रहे हैं, जलेबी बना रहे हैं, तो वो खाइए फिर, ब्याह कर तपस्या करिए। तो इसलिए ये वास्तव में किनकी जिम्मेदारी, ये जो मैनेजर में है व्यवस्था करने वाले लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, इससे साधारण भक्तों का दोष नहीं है, सीधी सी बात है कि वो ऐसे कुक्स का इंतजाम करें, कम से कम उनको बताए भैया नहाए धो के आओ और थोड़ा धोमाला करो और इन चीजों से दूर रहो, इन चीजों का ना उपयोग करो, कुछ तो स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा ना कि नहीं, ठीक है। और जो बहुत ज्यादा गंभीर भक्त है वो कहीं मंदिर से बनवा के लाए, भक्त प्रसाद बना के लाते हैं, ये लोग मंदिर से बना के ले जाते हैं, कहीं से भक्त है। जो वास्तव में गंभीर है भक्ति में, ये आपकी गंभीरता के ऊपर डिपेंड करता है, अपने अपने स्पिरिचुअल एडवांसमेंट को ध्यान रखते हुए, अपने अपने लेवल को समझते हुए हमें वैसे एक्ट करना चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअली सीरियस हैं, कुछ वास्तव में पाना चाहते हैं, तो उसके लिए त्याग तो करना पड़ेगा। ये नहीं कि सब कुछ खा भी लेंगे, सब कुछ हो भी जाएगा, वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, प्रेम भी मिल जाएगा कृष्ण का, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, त्याग तो करना पड़ेगा अगर आपको वास्तव में कुछ प्राप्त करना है तो। तो ये बात का ध्यान रखें। यहां पर आगे क्या लिखते हैं, अभक्त के समक्ष अर्च वगैरह की पूजा नहीं करना चाहिए, तथा जब कोई अभक्त दिखाई पड़ रहा हो तो भगवान की पूजा में व्यस्त नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि अभक्त का मतलब है कि वो व्यक्ति क्या करेगा, वहां पर आके भगवान की निंदा करेगा, भक्तों की निंदा करेगा, वहां के चिल्लाएगा, है ना, जो बताया हमने अपराध वो नियम से तोड़ेगा, तो उसके सामने डीटी वर्शिप करने से क्या और ज्यादा बाधाएं आती है। इसलिए इस प्रकार का वहां पे मैनेजमेंट के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अरेंजमेंट होना चाहिए, इसलिए हमें गार्ड्स इसलिए रखे जाते हैं कि वो वहां पर क्राउड को कंट्रोल करें, कि इस तरह का वहां पर अव्यवस्था ना वो लोग करें। ये सब हमें जो मैनेजमेंट भी क्या है, वास्तव प्रभुपाद से पूछा कि मैनेजमेंट किस भक्ति के कौन से अंग में आता है, प्रभुपाद से पूछा किसी ने, तो प्रभुपाद ने कहा अर्चे वगैरह की सेवा डीटी वर्शिप में आता है। तो डीटी वर्शिप में मैनेजमेंट के लोगों की जिम्मेदारी है, यानी कि मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है, ये डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है या नहीं, ये सबसे पहली जिम्मेदारी है, देख कहने का आती है। और इसलिए इन मैनेजमेंट जो भक्त है उनको ध्यान रखना चाहिए कि जब डीटी वर्शिप हो रहा है तो वहां पर गार्ड्स हों, वॉलंटियर्स हों, भक्त हों, सेवाधारी भक्त हों, जो इन सब बातों का ध्यान रखें, कुछ सिस्टमैटिकली कुछ कंट्रोल करें, प्रयास करें जितना हो सकता है। हाँ,
घर पर कर रहे आरती का समय हो गया, उस समय कोई बाहरी व्यक्ति आ गया तो उस समय कैसे, क्या करना चाहिए?
हाँ, वो समझ सकता है कि आप पूजा कर रहे हैं, वो बैठ जाएगा चुपचाप, लोकता तो समझते हैं भारत में, इसकी चिंता ना करें आप। पहले गणपति देव की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वह भक्ति के बाहर के सारे अवरोधों का दूर भागने वाला है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल होगा और कॉन्ट्रडिक्टरी होगा। प्रभु संहिता में कहा गया है कि गणपति भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों की पूजा करते हैं, प्रभुपाद उसको एडजस्ट कर रहे हैं। इस तरह समस्त बाधाओं को दूर करने में भक्तों के लिए कल्याणकारी बन चुके हैं। इसे सारे भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए हमने कुछ कोट्स देखे, प्रभुपाद ने इसका क्या आंसर दिया। एक तो जो हमने देखा इसमें टीका में देखा तो हरिभक्ति विलास में भी कहीं पर ये कमेंट नहीं मिला इसके बारे में, हरि भक्ति विलास में भी नहीं मिला, यहाँ तक कि भक्ति रसाम सिंधु में भी इसके लिए जो है कोई कमेंट नहीं है। इस बात को क्लियर करने के लिए कि ये कैसे बात को समझा जाए कि यहाँ पर गणेश जी की पूजा के बारे में बताया है। यहाँ पे लिखते हैं, दो देवता वर्षिप इज कंडेम, नो कमेंटेटर हैज एक्सप्लेन द इंक्लूजन ऑफ दिस आइटम, विघ्नेश रिफर्स टू गणेश इन मोस्ट केसेस, हाउएवर श्री वर्षा सब्स्टिट्यूट वर्शिप ऑफ भिक्षुक्षेन फॉर गणेश वर्शिप, सत्क्रिया सार दीपिका सेज टू वर्शिप भिक्षुक्षेन और द फोर कुमारस इंस्टेड, हरि भक्ति विलास ऑल्सो मेंशन्स गणेश दुर्गा एंड सरस्वती वर्शिप बिफोर परफॉर्मिंग वर्शिप विदाउट एनी कमेंट। तो कहीं भी इसको विशेष इसके बारे में टीका नहीं दी गई, व्याख्या नहीं की गई। लेकिन प्रभुपाद ने इसका क्या उत्तर दिया जब उनको पूछा गया कि नेक्ट्रो डिवोशन में गणेश पूजा के लिए कहा गया है, हम तो गणेश जी की पूजा नहीं करते हैं ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं, नो देयर इज नो नीड फॉर वर्शिपिंग गणपति, प्रभुपाद लिख रहे हैं। ये प्रभुपाद की चिट्ठी है और 1977 में, एंड द फैसिलिटी फॉर सच वर्शिप इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री, वर्शिपिंग कृष्णा इज सफिशियंट। व्यास देव डिड नॉट स्पीक ऑल द वेदास टू गणेश, ही सिंपली डिक्टेटेड। फिर प्रभुपाद कहते, सो फॉर वर्शिपिंग गणेश इज कंसर्न दैट इज नॉट नेसेसरी, नॉट दैट इट शुड बी डन ऑन अ रेगुलर बेसिस, इफ यू लाइक यू कैन प्रे टू गणपति फॉर रिमूविंग ऑल इंपेडिमेंट्स ऑन द पाथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट यू कैन डू इफ यू लाइक। इसका मतलब क्या है कि प्रभुपाद देख रहे हैं कि वो ज्यादा अगर अटैच्ड हो आप गणेश जी की पूजा में तो करो, कोई दिक्कत नहीं है कृष्ण भावना में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन प्रभुपाद ने कहा फिर ऐसे तो हम किसी भी देवता की पूजा कर सकते हैं। गणेश पूजा मे नॉट बी परफॉर्म, नो इट इज नॉट टू बी डन, नो नीड ऑफ इट, कंसर्निंग गणेश वर्षिप इट इज नॉट एक्चुअली नेसेसरी फॉर अस। फिर आगे क्या लिखते हैं प्रभुपाद, जरा ध्यान से सुनिए, बट इफ समवन हैज अ सेंटीमेंट फॉर गेटिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ गणेश इन ऑर्डर टू गेट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर कृष्ण सर्विस, देन इट इज ऑल राइट। फिर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं भक्त को, 1975, बट एनीवन हु टेक्स अप दिस काइंड ऑफ वर्शिप मस्ट सेंड मी एटलीस्ट $10,000 मंथली नॉट लेस। प्रभुपाद कहते हैं अगर कोई गणेश जी की पूजा करना चाहता है तो मुझे हर महीने $10,000 चाहिए। इफ ही कैनॉट सेंड इस अमाउंट देन ही कैनॉट डू गणेश वर्शिप। तो गणेश पूजा विघ्न दूर करने के लिए है। और प्रभुपाद ने यहां पर भी क्लियर किया है कि वो भी भगवान नरसिंह देव की पूजा करते हैं, उनसे ही वो शक्ति प्राप्त करते हैं। और प्रभुपाद ने नरसिंह आरती में दी है तो नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं विघ्न दूर करने के लिए, उससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इस तरह वे समस्त बाधाओं को दूर करने में भक्तों के लिए कल्याणकारी बन चुके हैं। नाखून या अंगुलियों में स्पर्श किए हुए जल से अर्चे वगैरह को स्नान नहीं कराना चाहिए, इसलिए नाखून हमेशा काट के रखना चाहिए, अपवित्र माना चाहिए, इस नाखून को काटना चाहिए। जब भक्त को पसीना आ रहा हो तो उसे अर्चे वगैरह की पूजा नहीं करना चाहिए। इस तरह अनेक विषेध हैं, वर्जनाएं हैं, ना तो अर्चे वगैरह पर चढ़ाए गए फूलों के ऊपर से कूदे, ना ऊपर पांव रखें। इसलिए ये जो माला है जो सुबह सुबह पहना देते हैं, ध्यान रखना चाहिए कि वहां कुछ भक्त ऐसे होने चाहिए जो जमीन पे फूल गिरे हैं उसको उठा दें, क्योंकि ये इसको निर्माल्य कहा गया है और ये भगवान के ऊपर ये चढ़ाया गया, ऑफर किया गया, ये प्रसाद है, तो उसके ऊपर पांव रखने से अपराध लगता है। जैसे अन्न प्रसाद जो होता है मंदिर में लेते हैं, प्रसाद मॉल में लेते हैं, उसके ऊपर रखते हैं पांव तब भी अपराध लगता है। इस तरह से फूलों के ऊपर भी पांव रखते हैं तब भी अपराध लगेगा, तो उन फूलों को वहां से उठाना चाहिए। इसलिए भागवतम क्लास में भी जो है इसलिए व्यवहारिक रूप से देखना है कि एक ही माला पर्याप्त हो वक्ता के लिए बस, क्योंकि अगर आप सबको माला पहनाएंगे तो पूरे टेम्पल हॉल में फूल गिरता है वहां पर, या तो फिर कोई साफ करने वाला हो उसको, तब तो ठीक है। हर कोई है नहीं तो फिर उसको हम लोग क्यों बेकार में हम लोग पहना रहे हैं, ताकि सबसे अपराध हो, ठीक है ना। और किसी का स्वागत करना है किसी भक्त का, माला पहनाया जाए, लेकिन साथ में ध्यान रखा जाए माला पहनाने के बाद जो फूल झड़ रहे हैं, फूल गिर रहे हैं, उसको वहां से साफ किया जाए, ठीक है। ना ईश्वर के नाम से कोई प्रतिज्ञा करे, कसम नहीं खानी चाहिए भगवान का नाम लेकर। ये विभिन्न प्रकार के प्राग भक्ति साधना के विषय में है और मनुष्य को चाहिए इनसे बचने के लिए सचेत रहे। पद पुराण में कहा गया कि ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन पूर्णतया पाप में है भगवान द्वारा पूर्ण रक्षित हो जाएगा यदि वे केवल उनकी शरण ग्रहण कर ले। अतः ये स्वयं सिद्ध है कि जो भगवान की शरण में जाता है वह सारे पाप पूर्ण कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। यदि वे भगवान के यहाँ अपराधी भी होता है तो भगवान के पवित्र नामों का जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, करने से उसका उद्धार हो जाता है। दूसरे शब्दों में हरे कृष्ण कीर्तन समस्त पापों को विनष्ट करने के लिए लाभप्रद है, किंतु यदि कोई भगवान नाम का अपराधी होता है तो उसके उद्धार की कोई गुंजाइश नहीं होती। पवित्र नाम जप के विरुद्ध अपराध इस प्रकार से है। तो यहाँ पर ये और भी जो है सेवा अपराध दिए गए थे, तो कुल मिला के करीब 50 या 51 सेवा अपराधों का यहाँ पर वर्णन किया गया। और ये नाम अपराध जो हम प्रत्येक दिन दोहराते हैं, उन नाम अपराधों का हमें ध्यान रखना चाहिए और इसका प्रत्येक दिन उच्चारण करने से हम लोग सावधानी बरत सकते हैं। इसको केवल पढ़ देते हैं, जिन भक्तों के ने भगवान नाम के प्रचार हेतु अपने जीवन अर्पित कर दिए हैं उनकी निंदा करना। शिव या ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम के तुल्य या उससे स्वतंत्र मानना, कभी कभी नास्तिक लोग ये मानते हैं कि कोई भी देवता भगवान विष्णु के समान है, किंतु जो भक्त है ये भलीभांति जानते हैं कि कोई भी देवता चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो भगवान के बराबर या उनसे स्वतंत्र नहीं हो सकता। अतः यदि कोई ये सोचता है कि काली काली या दुर्गा दुर्गा का जाप हरे कृष्ण के तुल्य है तो ये सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि काली कीर्तन के बारे में कहीं नहीं दिया गया कई शास्त्रों में। वॉट इज दिस काली कीर्तन, प्रभुपाद कह रहे हैं जगह तो शास्त्र में तो कृष्ण का ही कीर्तन करने के लिए कहा है। और कई जगह ऐसा अनुवाद भी मिलता है जहां पर ये लिखा है शिव या ब्रह्मा शिव जैसे देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम से अलग समझना, यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि वो अलग है, शिव जी का नाम अलग है या भगवान का नाम अलग है, ऐसा समझना भी अपराध बताया गया। उसका कारण ये है कि शिव जी अनन्य भक्त है भगवान के, और शास्त्रों कई जगह से पाया जाता है कि शिव जी को बराबर स्थान दे दिया गया भगवान से, वो इसलिए दिया गया कि भगवान के वो प्रिय भक्त होने के कारण, तो भगवान चाहते हैं कि उनको इस प्रकार का दर्जा दिया जाए। साक्षात हरि त्वेन समस्त शास्त्र, जिस तरह से गुरु के लिए भी कहा गया साक्षात हरि जैसे हैं, तो अगर आप भेद करेंगे ये कहेंगे कि नहीं वो उनके बराबर नहीं है तो इसमें भी अपराध लगता है। उसका कारण ये है, ये मतलब भाव से बताया गया है कि ये समझना कि शिव जी को आपको एक शुद्ध भक्त के रूप में देखना है, तो इसलिए भगवान की हमेशा इच्छा रहती है कि उनको बराबर का दर्जा दिया जाए। लेकिन साथ में हमें सिद्धांत को भी समझना है जो यहाँ प्रभुपाद ने बताया। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, वैदिक साहित्य या प्रमाणों की निंदा करना, हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा को काल्पनिक मानना, भगवान नाम पर मनमानी व्याख्या करना, भगवान नाम के बल पर पाप कृत्य करना, मनुष्य को ये नहीं मान लेना चाहिए कि चूंकि भगवान नाम के सारे पाप फल दूर हो जाते हैं वे पाप कर्म करता चले और तत्पश्चात हरे कृष्ण का जप करके अपने पाप कम कर ले, ऐसा घातक प्रवृत्ति अत्यंत अपराधपूर्ण है और इसे बचना चाहिए। हरे कृष्ण कीर्तन को वेदों में वर्णित शुभ अनुष्ठानों में से एक कर्म कांड मानना। 8 श्रद्धा रहित व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा को उपदेश देना। भगवान नाम कीर्तन में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है किंतु प्रारंभ में भगवान की दिव्य शक्ति का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो लोग पापी हैं वे भगवान की दिव्य महिमाओं का मूल्य नहीं समझ सकते, अतः उन्हें इस विषय में उपदेश ना देना ही श्रेयस्कर होगा। 10 इस विषय में अनेक उपदेशों को समझ लेने के बाद भी पवित्र नाम कीर्तन में पूर्ण श्रद्धा न रखकर भौतिक आसक्ति बनाए रखना। हर व्यक्ति को जो अपने को वैष्णव कहता है इन अपराधों से बचना चाहिए जिससे शीघ्र ही वांछित सफलता प्राप्त हो सके। तो ये नाम अपराध से बचना चाहिए, सेवा अपराध से बचना चाहिए। नाम अपराध से जब तक हम बचेंगे नहीं, हमें शुद्ध नाम का आभास नहीं होगा, नाम आभास की स्थिति में नहीं पहुंचेंगे, तो शुद्ध नाम कैसे हमें प्राप्त होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अपराधों से बचे और अपराधों का निरंतर अध्ययन करें कि अपराध होते क्या है। और इसलिए ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो सेवा अपराध हमने बताया है, सेवा अपराध को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, जिस तरह से नाम अपराध को हम गंभीरता से लेते हैं, और सेवा अपराधों से बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए। और जहां पर समस्या है कि एडी के बल बैठना या फिर घुटने के बल बैठना, जैसे कि बताया गया है वगैरह के सामने, तो ये भी जो है सब सेवा अपराध में आते हैं। जैसे कोई लोग एडी के बल बैठते हैं, कोई घुटने के बल बैठते हैं वगैरह के सामने, कोई दर्द नहीं है लेकिन वैसे ही बैठते हैं, एक शौक है, है ना। कोई पांव दिखा के, दोनों पांव दिखा के बैठ रहे हैं, तो कोई कोनी के बल बैठ रहे हैं। तो ये सब क्या है कि एक सभ्यता भी प्रकट करता है कि भगवान के सामने ठीक ठीक बैठना चाहिए, है ना। क्योंकि बैठने का भी तरीका होता है, इस तरह से बैठना है या मैं पता होना चाहिए। कुछ लोग दीवार के सहारे बैठे हुए, पांव फैलाए हुए, है ना, भागवतम क्लास चल रहा है और वक्ता क्लास दे रहा है, भागवत कक्षा चल रही है, ऊपर सीढ़ी में बैठे हुए, है ना। तो ये सब क्या है कि आदर की भावना नहीं शो करता है, इससे दिव्य ज्ञान का भी हृदय प्रवेश करेगा नहीं। जितना आप इस बात का ध्यान रखेंगे जो गीता में बताया गया, तत्विधि प्रणिपाते ने परिप्रश्न सेव्या, उतना ही दिव्य ज्ञान आपके हृदय प्रवेश करेगा। ये विधि है दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की। लेकिन आजकल क्या है कि कॉलेजेस में, स्कूल्स में ये प्रथा ही बदल गई है, टीचर सबसे नीचे होता है, विद्यार्थी सबसे ऊपर बैठे होते हैं, है ना। अरे आईआईटी में एक जगह दिया था, उनके क्लासरूम में क्लास दिया था, तो उसमें स्टूडेंट बिल्कुल ऊपर बैठे हुए थे, गर्दन पूरा इतना दर्द हो गया, बाप रे। हमें इस बात का दुख नहीं था कि ऊपर बैठे, लेकिन इस बात का जरूर दुख हुआ कि गर्दन में बड़ा दर्द रहा, क्योंकि देख ही नहीं पा रहे, सारे ऊपर बैठे हुए थे बिल्कुल। वो सबसे पीछे वाला जो स्टूडेंट है वो सबसे ऊपर बैठा हुआ था, वो ऊपर से नीचे देख रहे हैं, है ना। तो कैसे वो ज्ञान ऊपर जाएगा? ज्ञान तो अवतरित होता है एवं परंपरा प्राप्तम, है ना। भौतिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो, दोनों में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? क्या कह रहे हैं? ना क्या आई है, क्या दिक्कत है? स्नान करना चाहिए और थोड़ा मुश्किल है, इसलिए बाहर थोड़ा मुश्किल होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है जिसका ट्रैवलिंग या जॉब है, और उसमें थोड़ा सा दिक्कत तो आती है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो वहां भगवान से निरंतर हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसी समस्या से हमें से बचाएं, ताकि हम आपकी भक्ति ठीक से कर सके। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, हाँ। ऐसी कई बार परिस्थिति आ जाती है आजकल के जमाने में खासकर, कि आपको ऐसे जगह पर डाल दिया जाता है, ऐसी स्थिति में डाल दिया जाता है जहाँ वर्किंग आवर्स आपके बड़े काफी लंबे होते हैं या ट्रैवलिंग में होते हैं, बाहर खाना ही पड़ जाता है कई बार। तो उस समय निरंतर आप प्रार्थना करें भगवान से, क्योंकि आपका इंटेंशन नहीं है, आप चाहते नहीं है, मजबूरी में आपको ऐसा करना पड़ रहा है, ये भगवान भी समझते हैं। और दूसरा होता है कि आपकी व्यवस्था है फिर भी आप खा रहे हैं, आप समझ रहे हैं? दोनों बातें, एक तो आप ऐसी परिस्थिति आपकी ऐसी है कि आप नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसी परिस्थिति में कि आप उसके बगैर नहीं रह पाते, क्या करें आप, मजबूरी है, या प्रभुपाद ने आपको प्रीचिंग के लिए भेजा, गुरु ने आपको प्रीचिंग के लिए भेजा है ना। प्रभुपाद कई बार स्टेशन में उतार देते थे, यहाँ उतर जाओ या प्रचार शुरू करो, जाके मिल के आना उससे। वो सोचेगा कहाँ खाऊंगा क्या करूंगा, जाना ही पड़ेगा जब गुरु ने कहा है। तो जब हम लोग समर्पित होते हैं तो धीरे धीरे भगवान फिर व्यवस्था भी करेंगे। संघर्ष जरूर है, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि इंटेंशनली नहीं होना चाहिए, खासकर जब हमारे पास फैसिलिटी है, सुविधा है, तो वहां पर हम लोग को ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। मतलब हाँ, स्नान करके जाना चाहिए,
कपड़े तो वही होंगे,
कोई दिक्कत नहीं है, स्नान तो करे कम से कम, स्नान तो कर ले कम से कम, ना करने से स्नान करना तो अच्छा है, कुछ तो करें। नहीं, हमने बताया ना आपको अभी थोड़ी देर पहले कि वैष्णव संस्कार जो है वो अलग होते हैं, और हमारे इसमें वैष्णव जिन्होंने दीक्षा ली है और उन्हों के लिए जो षटके है सार दीपिका और संस्कार दीपिका में दिया गया है, किस तरह हम लोग वैष्णव समाज में किसी के शरीर छोड़ने पर हम क्या करते हैं। हम वैष्णव ब्राह्मणों को आमंत्रित करते हैं और उसके बाद उनको महाप्रसाद खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और संकीर्तन होता है घर में, इस तरह से घर पवित्र हो जाता है हमारा। तो कम से कम उस प्रोसेस में तो है, वो भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कई फैमिली सिचुएशन ऐसे होती है कि जहां पर आपको परिवार के हिसाब से चलना पड़ता है, फैमिली के हिसाब से चलना पड़ता है। आजकल तो वैसे भी डिस्काउंट मिल गया लोगों को, 13 दिन से 4 दिन हो गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चौथा बनाते ना आजकल, पहले 13 दिन बनाते थे, तो कलयुग वैसे ही कम हो गया समय, तो आगे और कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड थोड़ा मेंटेन कर रहा है आजकल। हाँ, डेड बॉडी का मतलब डेड बॉडी, एक्चुअली पशुओं के लिए कोई संस्कार नहीं बताया गया, मनुष्य के लिए संस्कार बताया गया है। पशु अगर मरता है उसके लिए कोई संस्कार नहीं बताया गया, क्रियाक्रम नहीं बताया गया पशुओं के लिए, क्रियाक्रम होता है मनुष्यों के लिए, क्योंकि मनुष्य के साथ कर्म जाते हैं ना, वो बंधन होता है उसका कर्म बंधन, तो इसलिए वो तड़पता है फिर जीव अपने कर्मों के कारण दूसरे शरीर में जाता है, जब तो जहां भी जा रहा है वो तड़प रहा है, वो ना तड़पे जाके, इसलिए यहां पर श्राद्ध किया जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने भी श्राद्ध के लिए गए थे कि नहीं, लेकिन जैसे उन्होंने श्रीपाद ईश्वरपुरी का दर्शन किया, क्या बोला उन्होंने, आपके दर्शन करने मात्र से ही 1 करोड़ पूर्वजों का उद्धार हो गया मेरा, मैं तो अपने पिता के लिए आया था सिर्फ। आप सोच रहे, तो इस तरह से महाप्रभु ने श्राद्ध किया श्रीपाद ईश्वरपुरी की सेवा करके, संकीर्तन करके उनको प्रसाद खिलाया, यही तरीका है। नहीं, वो ना अपराध नहीं है, क्योंकि आपका इंटेंशन अच्छा है कि जाप कर करके आप ऐसी चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो तो हम सब चाहते हैं, है कि नहीं। हाँ, वो तो शुरुआत है ना, ऐसे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल का सेमिनार करते हैं हम लोग, स्ट्रेस मैनेजमेंट का सेमिनार करते हैं, तो समान अदर उसको हमें चैंटिंग शुरू करवाने के लिए करते, वो गोल नहीं है। अभी जैसे बताया नाम की महिमा बताना, उसकी उतनी श्रद्धा नहीं है उसमें नाम में, तो महिमा बताएंगे तो हो सकता है वो नाम ही ना ले। तो इसलिए क्या है कि पहले हम लोग उसको बताते स्ट्रेस दूर होगा, एंग्जाइटी दूर होगी, ये फायदा होगा, मेटेरियल बेनिफिट्स उसको बताते हैं। तो समाधान वो चैंटिंग शुरू करता है, फिर धीरे धीरे प्रसाद लेता है, भक्तों का संग करता है, ग्रंथों का अध्ययन करता है, फिर वो गोल समझता है। वो तो शुरुआत थी, अभी बहुत कुछ है आगे।
ठीक है,
हाँ अच्छा है, आसन लेके करना अच्छा है, चैंटिंग लेके कोई ना कोई आसन रखिए। वैसे चाहरी नाम देने के लिए कोई वो नहीं है, नियम काल नहीं है, कोई उसके लिए कठोर नियम काल नहीं है, गायत्री के लिए निश्चित रूप से है। हाँ ऑफरिंग करते हुए भी आसन होना चाहिए। हाँ तुलसी भरने के सामने, तुलसी भरने के सामने बैठ कर, तुलसी भरने के सामने स्कंद पुराण दिया है, बहुत प्रभाव पड़ता है जब आपके जब बहुत। हरिदास ठाकुर जो लेते थे 300,000 नाम, वो तुलसी भरने के सामने बैठ के करते थे, बहुत पावरफुल होता है, बहुत लाभ मिलेगा उसमें चैंटिंग। ये बहुत ही पावरफुल आइटम है और सबसे बहुत सबसे बेहतरीन तरीका है तुलसी महारानी के सामने बैठ कर जब करो। प्रभुपाद ने इसलिए तुलसी जी को रखा, इवन मंदिर में भी आप देखते हैं दर्शन बंद होने के बाद भी तुलसी महारानी उधर ही रहते हैं, ये प्रभुपाद ने शुरू करा है। खाली हाथ जिसने जिसने स्वयं को ही दे दिया वो क्या फिर और क्या देगा। वो मन वाणी और शरीर जैसे लगाया हुआ है भगवान की सेवा में तो वो जाके गुणगान करे बस भगवान का, नहीं थे कि वो भी कुछ ले जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। आप भी फूल ले जा सकते हैं, आप भी तुलसी ले जा सकते हैं, है कि नहीं। हवा पानी तो सब जगह है, गरीब से गरीब व्यक्ति हो या अमीर से अमीर व्यक्ति हो, हर व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है। भक्ति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि भक्ति कोई भी कर सकता है, है ना। ध्यान योग हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, योगी हर व्यक्ति नहीं बन सकता है, ज्ञानी हर व्यक्ति नहीं बन सकता है, लेकिन भक्ति कोई भी कर सकता है, क्योंकि भक्ति इतनी सरल है, व्यवहारिक है, हर व्यक्ति के लिए। इसलिए प्रभुपाद ने पूरे विश्व में इसका प्रचार किया, क्योंकि पूरे विश्व में हर प्रकार के लोग भक्ति कर सकते हैं। जहां तुलसी नहीं थी प्रभुपाद ने वहां तुलसी पहुंचा दी। प्रभुपाद के जाने से पहले विश्व भर में तुलसी नहीं थी, प्रभुपाद के जाने के बाद ही तुलसी महारानी गई है बाहर। आप जानते हैं इस बात को, जापान में थोड़ा तुलसी थी, कोरिया में थोड़ा तुलसी थी, अमेरिका में थोड़ा सब तुलसी थी, सब जगह कहीं तुलसी नहीं थी, प्रभुपाद के जाने के बाद ही हुआ है। प्रभुपाद के जाने के बाद ही तुलसी गई है बाहर। तो इसका मतलब क्या है, तुलसी हर जगह है, जल हर जगह है, फूल है आपके पास, कुछ भी आप लेकर ले जाकर आप राधा पार्षदी को ऑफर कर सकते हैं, है कि नहीं। जरूरी नहीं कि खरीदना ही पड़ता है सब कुछ, बिना खरीदे ही बहुत कुछ मिल जाता है संसार में, सृष्टि में बहुत कुछ है जिसको खरीदना नहीं पड़ता है, वैसे ही मिल जाता है फ्री में। और कैसे, हाँ दीक्षा से पहले नामाभास की स्थिति पहुंच सकते हैं, नामाभास तक आप पहुंच सकते हैं दीक्षा से पहले, उससे आगे नहीं। उससे आगे बढ़ना है तो ठीक है बस। कभी बैठिए आप बताएंगे, ये सब तो डिटेल्स, पर डिटेल्स तो अलग है ना, उसके लिए अलग से क्लास लेनी पड़ेगी। डीटी वर्शिप का क्लास तो नहीं हो रहा है ये, तो एक रूप गोस्वामी ने एक बता दिया, क्योंकि ये एक डिवोशनल सर्विस का एक अंग है ना, फिलोसफिकल रीजन जानना बहुत जरूरी है। आरती क्यों उतारते हैं, आरती का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, आरती का क्या मतलब होता है, शब्द आरती बोले, आरती उतार रहे हैं हम, इसका क्या मतलब है? किसके दोष? अपने दोष या भगवान के दोष? भगवान को दोष लग गए तो आपको यशोदा भैया के प्लेटफॉर्म में होना पड़ेगा, इसका मतलब तभी आरती उतार सकते हैं। नहीं, आरती उतारने का मतलब यह है कि जो भी अमंगल है, अशुभ है, डीटी वर्षिप में आया जो हम लोग फेस करेंगे, या डीटी किसके आसपास जो भी अशुभ है, अमंगल है, उसको दूर करना, उतारना आइटम्स के द्वारा। तो इसलिए अगरबत्ती दिखाते हैं, दीपदान करते हैं, जिससे दुख दूर हो, अमंगल दूर हो, टू रिमूव डिस्ट्रेस, है ना, विद डिफरेंट आइटम्स, पैराफर्नेलिया। तो इसलिए ये भावना रहती है। ठीक है, हरे कृष्ण। भक्ति साहब चंदो की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सववेत भक्त वृंद की जय, और प्रेमानंद की जय।